أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سب سے پہلے تو معذرت تاخیر سے آنے کی اور خدا کی توفیق سے انشاءاللہ تھرڈ سیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے مل کے ایک بار صلوات پڑھ لیجیے. جس طرح ہم نے پریویس سیشنز کے اندر آپ کو مختلف ایجز جو بچوں کی ہیں اس کے حوالے سے کچھ مائل اسٹونس بتائے تھے, اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑی سی ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ٹپس بتائی تھی, تو آج ہم جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑے بچے جب ان میں تھوڑا سا شعور پیدا ہو جائے اس کے حوالے سے آج ڈسکس کریں گے, اور تھوڑا سا ٹین ایج کے بارے میں. اور آج پھر ہم کوشش کریں گے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کریں کہ جو ریئل ٹائم کے اندر آپ لوگوں کو جو مشکلات آتی ہیں تو ہر ایک ایج بریکٹ کی ایک کیس کے طور پہ ہم ڈسکشن کریں کہ بیسیکلی جو آپ کو کوئی پیرنٹ, مثلاً اگر کسی کے بچے 1 سے 3 سال تک کے درمیان ہے, 3 سے 7 سال کے درمیان ہے, اور 7 سے 12 اور 12 سے 18 کے درمیان ہے, تو ایک ایک ریئل ٹائم کے اندر جو مشکلات ہیں وہ بیان کریں, تو پھر ہم اس کو رائٹ وے آف ڈیلنگ دا کڈ کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ رائٹ وے میں کیسے ڈیل کرنا چاہیے. اس کو ہم کیس اسٹڈی کہتے ہیں یوزولی, چونکہ ہمارے پاس جو کیس اسٹڈیز ہوتی ہیں یعنی جو بک کے اندر یا دیگر چیزوں کے یا جرنلس وغیرہ کے اندر وہ ہوتی ہیں جو ویسٹ میں بتائی گئی چیزیں, ساری باتیں ہمارے سینیریوز الگ ہیں, تو ہم کوشش کریں گے ریئل ٹائم میں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے پیرنٹس فیس کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں. اچھا, اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی جو ایج بریکٹ ہے مثال کے طور پہ 6 سے 8 سال, جیسے ہم نے بات کی کہ اب بچہ جو ہے وہ اسکول جانے کے قابل ہو چکا ہے, اسکول جا رہا ہے, تو جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ 6 سال کی جب ایج ہوتی ہے بچے کی جرنلی, تو اس میں ایک چیز جو ڈیولپ ہوتی ہے, جیسے ہم نے بات کی جو بالکل چھوٹا بچہ ہے 1 سے 3 سال کا, اس کے اندر ایکسپلوریٹری بیہیویئر زیادہ ہوتا, یعنی وہ ہر چیز کے اندر ایک جستجو تجسس کا عنصر جو ہے وہ, اچھا یہ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف اس ایج میں ہوتا ہے, لیکن اس ایج میں زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم بات کریں گے ٹین ایج کی تو وہاں پر کون سا والا بیہیویئر زیادہ ڈومیننٹ ہے وہ ہم آگے بتائیں گے. تو یہ جو مڈل کا فیز ہوتا ہے اس کے اندر جو بیہیویئر کا پیٹرن ہوتا ہے اس کے اندر بچہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ شعور کی منازل میں پہلا قدم رکھ دیتا ہے, یعنی کیا ہے کہ یہاں پر اس ایج بریکٹ کے اندر جب وہ 6-7 سال کا ہو گیا ہے, اب اس کو آپ تھوڑا سا اس کے ساتھ رائٹ وے میں ڈائیلاگ کر سکتے ہیں, یعنی اس سے جو نیچے کا بریکٹ ہے اس بریکٹ کے ساتھ آپ نے بچے کے ساتھ آرگومنٹ, جیسے ہم نے بات کی تھی لاسٹ سیشن کے اندر اگر آپ کو یاد ہو, کہ آپ نے آرگیوٹیو نہیں ہونا ہے, کہ آپ اس کو ہر چیز کی جو بھی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں اس کو آرگیوٹیو موڈ میں نہیں کرنا ہے, لیکن جب آگے ایج میں آئیں گے تو آپ بچے کے ساتھ جب آپ ڈسکشن موڈ میں آئیں گے اس فیز کے اندر آپ کے پاس تھوڑا سا یہ پروویژن موجود ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں, یعنی اگر آپ بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کو یہ چیز کیوں پسند آ رہی ہے, مثال کے طور پہ آپ شاپنگ مال میں گئے ہیں, شاپنگ مال میں وہ ایک ایسا ڈریس پسند کر رہا ہے یا کر رہی ہے کہ جو کہ اسلامی شعار کے خلاف ہے, تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس نے اس مال میں جا کے وہ ڈریس اٹھایا اور آئی آپ کے پاس کہا کہ مجھے چاہیے, آپ نے یوں جھٹکے سے پکڑا اور اٹھا کے واپس وہاں یہ کیا اٹھا کے لے آئی ہو, تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے. تو دوسرا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے اچھا بیٹا ہم ابھی دیکھتے ہیں آپ کو یہ دلانا ہے نہیں دلانا میں آپ کو بتاتی ہوں, اور آپ لے جا کے رکھ دیں وہاں پر, اور پھر جب آپ گھر جائیں تو پھر بیٹھیں اور پھر ڈسکس کریں. ڈسکس یہاں پر پوچھیں گے ٹھیک ہے تم نے وہ چیز جو ہے وہ پسند کی تھی لیکن کیوں پسند کی تھی, تو یہ جو موڈ ہے تھوڑا سا اس کے اندر آپ آرگیو لے کے آ سکتے ہیں, لیکن آرگیومنٹ کا موڈ ایکسٹریم کسی بھی فیس کے اندر لائف کے, چاہے وہ اڈلٹ کی بات کریں, بچوں کی بات کریں, بوڑھوں کی, جہاں بھی آپ ایکسٹریمزم کو لے کے آئیں گے وہ چیز خطرناک ہے ہمیشہ, چاہے چھوٹا بچہ ہو, بڑا بچہ ہو, بالغ انسان ہو, میاں بیوی ہو, ماں باپ ہو, بہن بھائی ہو, جہاں بھی آپ ریجڈ ہو جائیں گے اور جہاں بھی آپ نے جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ فلیکسیبلٹی کو چھوڑ کے جو ہے وہ ریجڈیٹی ساتھ میں جو ہے وہ ایکسٹریمزم, یہ وہ جسے ہم کہتے ہیں یہ کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے بھی اور بیہیویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی لیتھل چیز ہیں, لیتھل یعنی جو مہلک کہتے ہیں اردو میں, جیسے کہ یہ وہ پوائزن ہے کہ جو اگر آپ نے انجیکٹ کر دیا گریجولی تو جو پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے پھر وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس کو پھر مینیج کرنا, جس کو ڈیل کرنا, چونکہ معاشرے میں آپ نے یقیناً جو لوگ جاب کر رہے ہیں یا جو لوگ ابھی انٹر ہو رہے ہیں پروفیشن کے اندر, تو جب وہ آفیسز میں جاتے ہیں, چاہے وہ اسکول کی بات کریں ہم, چاہے اسکول میں جاب کر رہے ہوں کسی بڑی آرگنائزیشن کے اندر, تو وہاں پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے بات کرنا نا بیکار ہے, اپنا ہی सर खपाना है इसके साथ और ये कोई चीज़ सुनता नहीं है, तो ये चीज़ क्यों डेवलप हुई उसके अंदर? तो ये डेवलपमेंट का आगाज़ बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स की वजह से हुआ उसके अंदर, कि जब वो खुद बच्चा था उसके साथ जो डीलिंग की गई उसके पेरेंट्स ने, मेंटोर्स ने, पीयर्स ने, वो थी कि जो बेसिकली उसको वो विंडो नहीं दी गई कि वो अपनी चीज़ को एक्सप्रेस कर सके, और अगर उसके कोई कंसर्न थे तो कंसर्न को उसके पेरेंट्स ने या जो भी गार्जियन थे उसने राइट वे में उनको टैकल और एड्रेस नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपका बच्चा किसी चीज़ की तरफ इंक्लाइनेशन शो कर रहा है, तो इंक्लाइनेशन शो करने का मतलब जैसे हम यानी जो राइट रूल है बेसिकली निप द इविल इन द बड, इसके मायने ये नहीं कि आपने दरख्त को यूं लेके फौरन काटना है। देर इज़ अ वे टू डील विद द किड कि अगर उसके अंदर कोई चीज़ डेवलप होना शुरू हुई है तो बहुत आसान है इसको इनिशियल फेज पे दबा देना, लेकिन किस तरह, ये अहम तरीन पॉइंट है कि आप बच्चे में जब कोई चीज़ देखते हैं उसके थॉट के अंदर, उसकी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर या फिर जो है वो उसके बिहेवियर के अंदर, तो आपको ये तीनों चीज़ें एड्रेस करने चाहिए। क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे की, तो बच्चे के अंदर जहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है, तो इन तमाम इश्यूज़ को आपने कंबाइनली लेके चलना है, यानी जो उसका थॉट प्रोसेस है, यानी जो मेंटल उसकी आपने जो है ग्रूमिंग करनी है, साथ में फिजिकल इसकी हेल्थ, फिटनेस, सेफ्टी, इन तमाम कंसर्न को, यानी एक पेरेंट की जिम्मेदारी, जिस तरह आप स्कूल में जाके बच्चे के साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो आप क्यों एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके उनको जिम्मेदार ठहराते हैं? वो तो कह दे कि नहीं हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाना है। नहीं, पढ़ाना ही, जो बच्चा आपकी प्रीमिसेस में आ गया तो उसकी सिक्योरिटी का कंसर्न भी बेसिकली उस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास है कि बेसिकली आप बच्चों को वो सेफ्टी इन्वायरमेंट दें कि वो फिजिकल प्रॉब्लम भी उनको ना आए, उनको कोई चीज़ वहाँ पर ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई ये मेरा तो कंसर्न नहीं है, बच्चे आपस में लड़ने दो। नहीं, तालीम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप टीचर आए पढ़ाए और उसके बाद क्लास से निकल जाए। तो मैं ना हूँ, पेरेंट्स का काम ये नहीं कि बस आपने बोला कि भाई तरबियत का मसला मतलब ये कि भाई वो राइट जो है बस वो इस्लाम सिखाऊं, उसे मैं अहकाम बताऊं और बस उसे इबादत करवाऊं। नहीं, उसकी राइट ग्रूमिंग का मतलब, चूंकि वो जब वो ग्रो हो रहा है तो जहां उसका माइंडसेट ग्रो हो रहा है वहां उसकी फिजिकल ग्रोथ भी हो रही है। तो फिजिकल ग्रोथ के लिए भी जो है वो एक ये इसलिए लिंक्ड है और इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ जहन में रखिएगा कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ के अंदर जहाँ पर हम सारे थॉट्स की बात कर रहे हैं, बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं, ग्रूमिंग्स की बात कर रहे हैं या उसके सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहे हैं, इन तमाम के अंदर एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट क्या है कि बेसिकली तमाम चीज़ें किससे लिंक्ड होंगी, इसकी एनर्जी, इसकी फ्यूल्स क्या होंगे, इसकी एनर्जी, इसकी फ्यूल्स वो भी जो आप उसको खिला रहे हैं। अगर उसको बैलेंस्ड डाइट नहीं जाएगी तो बच्चों मसलन अगर बच्चा एनेमिक है तो वो वीक होगा, जब वीक होगा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक चिड़चिड़ापन आएगा, जब उसका चिड़चिड़ापन आएगा या उसकी फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी तो वो अपने दूसरे स्कूल में साथियों को दिखेगा कि वो रनिंग कर रहा है, मैं रनिंग करने जाता हूँ तो गिर पड़ता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगी, उसको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगी और डिस्टर्ब भी करेंगी मेंटली तौर पर। तो जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो मेंटल इलनेस के अंदर इसके फिजिकल आस्पेक्ट भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो इसके मायने क्या है कि जारी बात है, अब ये भी हमारे पास एक डिलेमा है कि यहाँ पर महंगाई की वजह से कंसर्न है कि बच्चों को हम अच्छी गजाएँ खिलाने से भी महरूम इसलिए हो रहे हैं कि जारी बात है महंगाई इतनी हो गई है, जो अफोर्डेबल जिनके लिए नहीं ये चीज़ें तो बेसिकली जो अफोर्ड कर सकते हैं एटलीस्ट वो अफराद अपने बच्चों की जो डाइट होती है उस पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ये लिंक है डायरेक्ट। अब वो मुश्किल साइंटिफिक चीज़ें बयान नहीं करेंगे क्योंकि वो जारी बात है आप लोग के कंसर्न भी नहीं है कि भाई अगर कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं और वो किस गज़ा से जो है वो डेवलप होते हैं, और अगर आपने गज़ा वो डेफिशिएंट कर दी तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर काम होगा, जब वो न्यूरो ट्रांसमीटर काम होगा तो उसके बिहेवियर इंपैक्ट क्या होंगे, मूड डिसऑर्डर्स कौन से डेवलप होंगे, स्लीप उसकी डिस्टर्ब होती है, जब स्लीप डिस्टर्ब होगी तो पूरी की पूरी डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो बच्चे को सेफ इन्वायरमेंट, अच्छी बैलेंस्ड डाइट और प्रॉपर स्लीप, अगर ये नहीं है तो ये सारी की सारी मेंटल एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं सब डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी आप मजदूर से बोलें कि बेहतरीन जो है वो अच्छी वाली सीमेंट इस्तेमाल करें, अच्छी प्रोपोर्शन के साथ, उतने ही तनासुब के साथ बजरी भी लगा के बेहतरीन दीवार खड़ी करे, प्लास्टर करे, और कोई आया उसको बार बार कुरेदना शुरू कर दे तो प्लास्टर गिर जाएगा क्योंकि मजबूत नहीं हुआ। तो बच्चा जब ग्रो कर रहा है तो बच्चे की ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर जो स्लीप है इज वन ऑफ द वेरी गोल्डन एंड की फैक्टर। और अगर अब इसमें हम साइंटिफिक पॉइंट्स में नहीं जा रहे लेकिन जस्ट फॉर यानी फूड ऑफ द ब्रेन कि जितना बच्चा छोटा होता है आप देखें उसका स्लीप टाइम ज़्यादा होता है, जब वो इन्फेंट, जैसे हमने स्टेजेस बात की थी, जब वो इन्फेंसी के स्टेज पर है तो एक इन्फेंट बच्चा 22 घंटे सोता है, वो सिर्फ उस वक्त उठेगा जब उसे भूख लगेगी या उस वक्त उठेगा जब उसने जो है वो पॉटी या यूरिन पास कर दिया है, ठीक है, वरना वो मैक्सिमम, फिर ये ड्यूरेशन छोटा होता रहता है, फिर वो 18 घंटे, 16 घंटे, 10 घंटे, और फिर जब अडल्ट हो जाते हैं तो एवरी स्लीप 7 से 8 घंटे, और जब आप बूढ़े जाते हैं तो ये श्रिंक होकर 5 से 6 घंटे पे आ जाती है। तो ये लाइफ की चीज़ आपको इसलिए भी, ये नेचर आपको बहुत सारे आंसर खुद देती है कि जब आप बच्चा है, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट के लिए आपने क्या करना है, उसको कौन से मोड में रखना है, रेस्ट मोड में रखना है। उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो जब डेवलप हो रहे होते हैं तो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली वो रेस्ट फेज के अंदर हो। रेस्ट फेज से मुराद क्या चीज़ है कि जारी बात है, जब वो सोएगा तो अंदर के, जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो आप क्या करते हैं, उस जगह को क्वारंटाइन कर देते हैं, यानी उसके गिर्द। अच्छा, आवाज सही है। तो जब आप कोई चीज डेवलप करने जाते हैं, किसी जगह को कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उस एरिया को आप क्या कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, ताकि यहाँ पर अमल दखल ना हो और इसको हम जल्दी से बना सकें। तो इसी तरह अगर बच्चा जागता रहेगा तो उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती रहेगी, तो जो डेवलपमेंट होनी है वह स्लो होगी। तो इसलिए इसका सारा का सारा डेवलपमेंटल फेज जो होता है बच्चों का, मैक्सिमम किस फेज में होता है, जब वो स्लीप मोड में होते हैं। और ये हमारे लिए भी, जो जब हम मेमोरी पे लेक्चर्स देते हैं तो उसके अंदर एक की फैक्टर बेसिकली आती है गुड स्लीप। जो लोग नहीं करते हैं उनकी मेमोरी वीक होने लगती है, क्योंकि जो मेमोरी को मेंटेन करने के लिए जो आपको ब्रेन में केमिकल्स चाहिए उनके स्टोर्स होते हैं, जो कंज्यूम हो जाते हैं दिन भर के अंदर। तो नेक्स्ट डे की वर्किंग फंक्शनिंग के लिए आपको जो स्टोर्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए अल्लाह ताला ने नींद रखी है। उस नींद के दौरान वो सारे के सारे केमिकल्स दोबारा से रिफिल हो जाते हैं, और रिफिल अगर आपकी नींद श्रिंक है, शॉर्ट है, कम है, तो ऑटोमेटिक वो कम बनेंगे तो आप नेक्स्ट डे आपकी वर्किंग के लिए ही, जब पेट्रोल जितना आपकी गाड़ी में होगा उतनी गाड़ी चलनी है। इसी तरह आपकी मेमोरी के जो वीक होने के असबाब है उसके अंदर एक फैक्टर इरेगुलर या इनकम्प्लीट स्लीप है। इसके माने ये नहीं कि आप सोते रहें ज़्यादा होने का मतलब, ज़्यादा सोने का मतलब नहीं कि स्टोर ज़्यादा बनेंगे। इसको इस तरह समझें कि बेसिकली जो आपकी ओवरहेड टैंक की कैपेसिटी है, बेसिकली वो फिक्स वॉल्यूम ऑफ वाटर उसके अंदर आना है। अब आप 4 घंटे मोटर लगाएंगे तो वाटर फ्लो ओवरफ्लो होता रहेगा, वो अपनी ही कैपेसिटी के साथ ही वर्क करना है उसमें। आप उस नीचे जो आपके पास अंडरग्राउंड टैंक है उससे आपकी जो छत की टंकी है अगर आप उसे फिल करेंगे तो वो जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो पानी नहीं आएगा उसमें। तो आप ये मत समझे कि कल में 6 घंटे सो या 9 घंटे सो के बैलेंस, नहीं, ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये डेली का साइकिल है, तो जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है उस लिमिट के बाद अगर आप सोएंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जब आप बार बार जैसे टंकी में पानी ज़्यादा भरेंगे तो आप जो चीज़ भरते हैं तो फिर उसकी वॉल्स के साथ वो पानी सोक करेगा, वॉल्स जल्दी उसकी डैमेज होगी। इसी तरह अगर आप ओवर स्लीप करते हैं तो ओवर स्लीप, ये बाकायदा प्रूवन स्टडीज में बाकायदा, जिसके अंदर हर 5 मिनट एक्सेस नींद के नेगेटिव इम्पैक्ट डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर क्या होते हैं, पूरी की पूरी प्रूवन, अब साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि अगर आप ओवर स्लीप करते हैं तो हर ओवर स्लीपिंग आपके लिए कितनी कितनी डैमेजिंग हो सकती है अगर आपने इसको पैटर्न बना लिया। तो जो लोग अगर ओवर स्लीप करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को जहन से निकाल दें कि ये बेनिफिशियल हो सकती है कि मैं कल 2 घंटे सो जाऊँ तो आज 10 घंटे सो लूँ, नहीं, वो फिर आपके लिए नेगेटिव होगी। सही है, जहन में चीज़ को क्लियर रखें। तो बच्चों को उस एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा कि वो अपनी स्लीप को मेंटेन करे, और यही वजूहत है आज के दौर में, चूंकि हमारा पैटर्न थोड़ा सा ऐसा हो गया है, चाहे वो मजालिस हों, दीगर प्रोग्राम हों, शादी की तकरीबात हों, घर की महाफिल हों, रात रात भर जब बच्चा जागेगा तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेसिकली वो नेक्स्ट डे जो है वो अर्ली फ्रेश होकर उठेगा और फिर स्कूल में परफॉर्म करेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो लिंक्ड हैं मल्टीपल फैक्टर के साथ, जिसको हमें खुद रहे, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट और जब हम शेड्यूलिंग की बात करते हैं वो इसीलिए होती है कि आप कि निज़ाम एटलीस्ट चले, आप अब बड़े हो चुके हैं लेकिन बच्चों के लिए कुछ ऐसा फिक्स क्राइटेरिया रखें। और आपको ने देखा होगा कि कुछ भी हो, जिनकी आदत होती है बच्चे, वो फिक्स टाइम पे उनको नींद आने लगती है, घर में तकरीबन कुछ हो, उसकी वजह ये होती है कि नेचर नहीं रखे उनके अंदर, जो आपके सिस्टम की क्लॉक है, जब उनका ऑनसेट ऑफ स्लीप आता है तो वो ऑटोमेटिक उस टाइम वो केमिकल रिलीज होता है कि वो नींद और हौसलगी में जाते हैं। अब आप अगर उसको जबरन जो है वो उठाएंगे जगाएंगे, मसलन आज आपको लेके जाना है फलां जगह, या मसलन आज जो है वही तकरीबन जागते रहो, तुम्हारी ही सालगिरह है, तुम्हें तो भाई सालगिरह है, तो किसने ये बना दिया है ट्रेंड के सालगिरह रात में ही होनी चाहिए? किसने ट्रेंड बना दिया है कि जो आप घर की तकरीबात रखें वो नाइट में ही रखें? अगर नाइट में रखनी है ठीक है, बेसिकली आप उसको कोशिश करें कि 8-10 बजे, और फिर मसलन जितना लेट करेंगे तो खाना जितना लेट खाएंगे ये वैसे मुजरे सेहत है। तो आप जो चीज़ करने जा रहे हैं उसे प्लान अप करें, विद इन ड्यू टाइम जो है उसको रैप अप करें। ये सब चीज़ें जो हर एक के लिए जो है वो मतलब, चूँकि सबके ही जो फैमिली वाले हैं नेक्स्ट डे बच्चों ने स्कूल जाना है, हाँ अगर वीकेंड तो वीकेंड पे जो कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है, यही कॉन्सेप्ट, ये वेस्ट का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, बिना कि वीकेंड का मतलब बेसिकली आजादी, आजादी इस लिहाज से कि टाइम बाउंड नहीं है अभी आप, क्योंकि नेक्स्ट डे आपने, क्योंकि वहां तो कॉन्सेप्ट नहीं है नमाज और इबादत का, तो उसको ये थोड़ी कि वो दो बजे भी नाइट पार्टी से पब से आएगा तो उसे ये थोड़ी कि सपोर्ट कि पांच बजे नमाज फजर के लिए उठना है। लेकिन हम तो मुस्लिम माशरे के लोग हैं ना, तो हमें तो पता है कि हम चाहे शब अजा करनी हो या कोई शादी की तकरीब को कुछ भी हो, नेक्स्ट डे या फजर का टाइम तो सुबह ही है, वो तो आगे पीछे थोड़ी होना है। तो आपके पैटर्न जो ये इन पैटर्न को हमें खुद रिवाइव करना होगा ना माशरे के अंदर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम ये नहीं कह रहे कि मेगा लेवल पर चेंज लेके आए, सिंगल लेवल पर भी अगर हम इंडिविजुअल अगर तब्दीली लेके आ सकते हैं तो यही कंट्रीब्यूशन होगा हमारा। तो हम अपनी तकरीबात को अपने, अगर मैं अपने घर का सरबरा हूँ, आई कैन टेक माई डिसीजंस, तो मैं क्यों नहीं ले रहा डिसीजंस, तो मैं तो ले सकता हूँ। तो नहीं ले रहा तो इसके माने कि जब मैं कहीं जाके बोल रहा हूँ तो वहाँ तो एक पैटर्न देने की बात कर रहा हूँ, और खुद जब उन मोड्स में आ रहा हूँ तो वो वही जो ट्रेडिशनल माशरे के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो उसके मानने के लिए तजाद है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें जो है वो यानी जैसे कहना चाहिए कि प्रैक्टिकली जो है वो खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जाके वी कैन ब्रिंग सम चेंज। तो ये जो चूँकि एट द एंड जब हम देखते हैं लेक्चर सेशन, तो फिर पेरेंट्स आके डायरेक्ट रियल टाइम प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज नॉट लाइक दैट कि आपको अगर दर्द हो रहा है यू टेक द एनाल्जेसिक यानी पेन किलर लें और वो दर्द कम होना शुरू हो जाएगा फौरन। तरबियत का मैकेनिज्म इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। पैटर्न जो आपने बना लिया तो उस पैटर्न को दूसरे पैटर्न से रिप्लेस करना होगा ग्रेजुअली, तब वो उसके अंदर वो उसके उस बिहेवियर के अंदर जो चीज़ डेवलप हुई थी वो निगेट होकर न्यू पैटर्न आएगा उसके अंदर, एंड इट विल टेक टाइम। और उसके लिए आपने क्या करना है, मॉडल्स को पैटर्न को तब्दील करना होगा। तो इसके क्या मायने, ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो हम बच्चों पे जो हम थोप देते हैं कि वो अब सुनता है नहीं, वो बात नहीं जो है हमारी मानता, और वो जो है वो फला इसके साथ इश्यू है, वो अपने दोस्तों की बात ज़्यादा मानता है और उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ये नहीं कि आपने आज जाके कुछ बोल दिया उसको तो वो फौरन ही, तो आपको कुछ मेजर स्टेप आपके एंड का ये जहन में रखें कि आपने जो चीज़ करनी है बच्चों के साथ उसकी मेजर प्रैक्टिकल स्टेप बेसिकली आपने उठाना होगा। और ये कई बार मैं पॉइंट्स रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप भूल जाएं कि अगर आप अपने अंदर प्रैक्टिकल चेंज नहीं लाएंगे तो आप ये भूल जाएंगे आपका बच्चा आपकी बात मानेगा या सुनेगा या वो चेंज होगा। सबसे पहली चीज़ करने के लिए आपको खुद प्रैक्टिकल वो चीज़ें करनी होंगी। जब आप करेंगे आप करके देख लें, यानी कोई वो चीज़ नहीं बता रहे कि जिसको करने के लिए आपको कहीं और जाना पड़ेगा। आप जाएं प्रैक्टिकल स्टेप पहले चार महीने से करें बच्चों को वर्बली, एक हफ्ते करके देख लें, वो चार नसीहतों से रिपीट करते रहे, वो थोड़ी देर के लिए प्रेशर में आकर वो कर रहा होगा, उसके बाद वो नहीं मानेगा वो बात। लेकिन अगर आप चार या एक चीज प्रैक्टिकल कर लें उसके साथ कई दफा आप देखें, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। ये सब यानी ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड गोल्ड है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है सारे ना, जिसको आप कोई भी फॉलो करेगा उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिक खुद रियलाइज कर लेंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें इस एंगल में देखना है कि हमने उनकी तरबियत के लिए पहले खुद अपने मामला को दुरुस्त करना होगा, तब जाके जो चीज़ें बेहतर होंगी। तो 6 से 8 साल के बच्चे की जब हम बात की, जैसे हमने बात की कि इस एज में जिस तरह शेर फॉर्गे में एक्सप्लोरेटरी नेचर जो है वो उसकी जो है वो डेवलप हो चुकी होती है, तेज़ होती है, इस एज से बच्चे के अंदर जब शऊर का स्टेप स्टार्ट होता है तो वो हर चीज़ के अंदर जो है ना वो कोशिश करता है कि सवाल को वाई की तरफ लेके जाए, यानी क्यों, ठीक है ना। अच्छा ये क्यों है बेसिकली एक्सट्रीम हो जाता है जब हम पहुँचते हैं टीनेज के अंदर, ठीक है ना। तो ये स्टेज का आगाज इस फेज से होता है। तो जब हम हर क्यों को यानी वाई आई शुड डू दिस, वाई यू आर टेलिंग मी टू डू दिस, तो ये सब जो चीज़ें बच्चे में आ रही होती, तो आपने इस वाई को इस फेज में यानी टीनेज का फेज का वाई को एड्रेस करने का पैटर्न अलग है, लेकिन इस एज के जो बच्चे हैं वाई का शऊर का उनसे डेवलप हो रहा है उसको एड्रेस करने के नॉर्म्स और पैटर्न बिल्कुल अलग है। इस एज में वाई को जैसे हमने बात की कि आप यू कुड बी अ लिटिल बिट आर्गुएटिव, यानी जो मेदार होनी चाहिए आर्गुमेंट की बहुत ही एक तो सॉफ्ट शुगर कोटेड बहुत ही मिनिमल हो, अगर आपने इसमें ज़्यादा आर्गुमेंट इस स्टेज में लाए तो इसका इम्पैक्ट क्या निकलेगा, वो ज़िद्दी बनेगा, ठीक है ना। बच्चे आते हैं पेरेंट बोलते हैं बहुत ज़िद्दी है मेरा बच्चा, क्यों ज़िद्दी हुआ, तो आपने चूंकि इस पॉइंट को एड्रेस प्रॉपर नहीं किया। तो अगर आप चाहते हैं बच्चा ज़िद्दी ना, तो आपको इस फेज के अंदर उसके सवाल के जो वाय है क्यों क्यों अल्लाह जो है वो एक क्यों है, हम अल्लाह की इबादत क्यों करें, क्यों नमाज पढ़ने के लिए आप कह रही हैं, क्यों हिजाब की आप बात कर रही हैं, क्यों मैं स्कार्फ पहनूं, मैं स्कूल जाती हूँ तो वो तो बेहतरीन से बाल बना के आती है मेरी कुली, ठीक है वो बर्थडे पार्टी में गई थी तो आप मुझे क्यों नेल पॉलिश नहीं लगाने दे रही हैं सेंच के अंदर, वो तो मेरी फ्रेंड मेरी क्लास की है, उसकी मामा भी लगाई थी और वो भी लगा के आई थी, उसने बारबी डॉल का पूरा ड्रेस पहना था तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। तो यू हैव टू एड्रेस ऑल दिस वाई इन अ राइट वे, ठीक है। तो इसको डील करने का तरीका कार ये है कि आप उस वाई की सोर्स पे जाएं। अब उसने सोर्स बच्चे ने बताने तो सोर्स को डिग आउट करवाएं और डिग आउट कराने के बाद उस सोच के अंदर आप एक ऑल्टरनेट पॉजिटिव सोच लेके आए। तो पॉजिटिव सोच लाने के लिए अगेन इसमें वही सारे पॉइंट्स आएंगे कि जितना खुद आपका मुताला, जितना खुद आप राइट वे में डील करना आएगा तभी बता सकेंगे। कि आपको खुद अगर वो एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे कि वॉट आर द पॉजिटिव एग्जाम्पल्स फॉर दिस वाई तो आप कैसे बताएंगे। जैसे हम बता रहे हैं कि टिप्स क्या होंगी, जब टिप्स नहीं बताऊंगी तो फिर हम कैसे एड्रेस करेंगे। तो इसके माने खुद भी चाइल्ड ग्रूमिंग और चाइल्ड की तरबियत के ऊपर जो मजामीन होते हैं या बुक्स हैं थोड़ा सा उसको रीड आउट करना होगा एज वाइज, ठीक है ना। बच्चों को कैसे डील करना है, किस एज में, उस एज के तकाजे के हिसाब से आपने बच्चों के स्कूल के अंदर जो सिलेबस की बुक्स होती हैं वो पहली क्लास में भी इंग्लिश पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, उर्दू पढ़ता है और मैट्रिक तक भी पढ़ रहा होता है, इंटर तक भी, तो सबके लेवल्स अलग होते हैं। एक स्टेप वाइज फिनोमेना है कि जो मैथमेटिक्स ने ए प्लस बी और वन टू थ्री और सबसेक्शन एडिशन और डिवीजन पढ़ा है उसने, वो जब आगे पढ़ता है तो फिर वो मैट्रिक और नाइन्थ में आके क्या पढ़ता है, फिर वो थियोरम्स पढ़ रहा होता है, फिर वो डेरिवेटिव्स निकाल रहा होता है, ये सब चीज़ें की स्टेप। तो जिस तरह आप हर सब्जेक्ट के बुक के एज वाइज क्लास वाइज लेवल के हिसाब से बुक्स हैं बहनों तरबियत के लिए बच्चों की हर स्टेज हर ईयर ये सब उसके लिटरेचर मौजूद हैं, तो आपको उस एज ब्रैकेट का लिटरेचर पढ़ना होगा। कि नेट पर जब हम जाते हैं तो हम एक जर्नल वीडियो देख लेते हैं, आपने देखना होगा कि जो वीडियो है वो जर्नल है, बेसिकली स्पेसिफिक उस एज ब्रैकेट की है जिस एज ब्रैकेट में आपका बच्चा भी है, आपने वो लिटरेचर डिग आउट करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप स्कूलिंग के अंदर उसके कैलिबर की बुक्स रखते हैं ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर सके, इसी तरह उसकी तरबियत के लिए उस एज ब्रैकेट के जो लिटरेचर मटीरियल मवाद मौजूद है वो आप थोड़ा सा खुद रीड आउट करें ताकि आपको पता लगे। क्योंकि इसमें ये अभी हम जितनी बातें करें जर्नल है सारी, बच्चे के टाइप को देख के उसकी इंक्लाइनेशन कहाँ पर है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे दो तीन बहन भाई हैं और एक पढ़ने में अच्छा है और एक पढ़ने में कम है, रिजल्ट आता है, एक के मार्क्स अच्छे आते हैं, एक के मार्क्स हो सकते हैं फेल हो जाए। अब जाहिर बात है जो बच्चे अभी पेरेंट के लेवल पर बात नहीं हो रही, बच्चों के लेवल पर बात हो रही है, अब जो जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं वो क्या कहता है, हमने घरों में देखा है तुम तो पढ़ते ही नहीं, तो फिर देखो मैं तो मेरी पहली पोजीशन आई है। क्योंकि बच्चे में भी वो शोर नहीं कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, वो तो चूंकि उसके अंदर जो सेकंड चीज़ इस एज में डेवलप होती है वो कौन सी होती है, तारीफ का सुनना। तो ये वो एज है जिसमें आप प्रेजिंग करें हर पॉइंट पे जिसको उसने अचीव किया है, इस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल करें। ये सेंटेंस बेसिकली आपने टीन एज में इस्तेमाल करना, क्या हम प्राउड ऑफ योर You should proud of yourself, यानी उस बच्चों को बताएं कि तुम अपने आप पर फख्र करो। इस बात पर फख्र नहीं करोगे अपने तुम्हें मसलन एक ब्रांडेड नया आईफोन प्रो ला के 14 दे दिया 3.5 लाख रुपए का, नहीं, उसने जो स्किल्स अचीव की हैं, उसने जो एक्सेलेंस अचीव की है, वो चाहे एकेडमिक हो या एक्स्ट्रा करिकुलर हो या इस्लामिक हो, बोले तुम्हें इस चीज पे अपने आप को इम्तियाज महसूस करना चाहिए कि दुनिया में और कितने बच्चे मसलन तुम 6 ईयर्स की एज में तुमने जो है वो मुशी कर लिए, पैदल चले हो तुम और नजर से करबला गए हो, ये बहुत बड़ी सआदत है, तुम्हें इस चीज़ पे फख्र करना चाहिए, अल्लाह तुम्हें सआदत दी इतने सारे लाखों बच्चों को सआदत। फिर आप बोले मुझे भी तुम पे फख्र, एज अ मदर एज अ फादर आई आल्सो प्राउड ऑफ यू, मेरा बच्चा इतना अच्छा है, मेरे बच्चे ने ये चीज़ अचीव की है, मेरे बच्चे की कामयाबी है, तुम्हें सर्टिफिकेट मिला, तुम्हें ये मेडल मिला, तुमने ये चीज़ अचीव की, तुमने इस पूरे रमज़ान में जो है वो 20 रोज़े रखे, तुमने जो है वो सारे मिल के अमाल शब कदर साथ में किए, मुझे बहुत फख्र है, गले लगाए उसे, ठीक है, मुस्कुराए उसके साथ बैठ, ये चीज़ इट विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ठीक है, तो ये चीजें आप प्रैक्टिकली करेंगे देन यू विल सी द इम्पैक्ट। और हम चूंकि जो बातें मैं कर रहा हूँ अब आप रियलाइज कर लेंगे हम रियल टाइम में कैसे डील कर रहे हो, तो वो सब डिवास्टेटिंग उसकी पर्सनैलिटी के लिए। तो जब हम उसको डैमेजिंग थॉट्स के साथ ग्रूम करेंगे तो जाहिर बात है उसकी पर्सनैलिटी वीक होनी है, उसकी पर्सनैलिटी में डेफिसिट्स आने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इस 6 से 8 ईयर्स के अंदर आपने पहली चीज जो है वो उसके वाय वाले पॉइंट्स को एड्रेस करना लाइटली सॉफ्टली है ना, लिटिल बिट इन ऑब्जर्वेटिव मैनर। सेकंड चीज के वो इस एज के अंदर उसके अंदर लिटिल बिट प्रेजिंग का फिनोमेनन डेवलप होना शुरू होता है, तो आप उसकी हर अच्छी बात अच्छी आदत पे उसको प्रेज करें दोनों वे में, उसको बोलें कि तुम्हें भी इस अच्छी आदत की वजह से खुद को अच्छा महसूस करना चाहिए और मुझे भी तुम्हें देख के अच्छा महसूस होता है और तुम्हारे घर वाले भी इस बात पे बहुत अच्छा फील करते हैं कि देखो कितना अच्छा ये बच्चा है उसकी क्या चीज़ है। सेकेंड चीज़ ये कि इसी एज के अंदर जो है वो जो जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इस एज में बच्चे के उन फ्रेंड्स जो रियल आप बना दें क्लास में बैठ कर और बात है कि भाई ये जैसे कुछ स्कूल में पार्टनर बना देते हैं वो, लेकिन 6 ईयर्स एंड ऑनवर्ड्स बच्चा खुद चूजी होने लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है। ये वो थर्ड इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि जहां पर अब वालदैन गार्जियन पेयर्स मेंटोर चेक करें कि उसने किसको पिक किया है एज अ फ्रेंड, क्योंकि वो आगे बताएगा अम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड ये है, अब्बा आज मेरे बेस्ट फ्रेंड, अब आपको वहां से पता चल जाएगा ये किसको बेस्ट फ्रेंड डिक्लेयर करता है अपनी क्लास के बच्चे को या मोहल्ले में जब वो बाहर खेलने जाते हैं तो किसको। गो एंड चेक, मीट विद हिम, मीट विद देयर पेरेंट्स, ठीक है ना। खास तौर पर ना जाए सबसे आइडियल में क्या है कि ठीक है बेटा बहुत अच्छी बात है मैं भी मिलना चाहूंगा बच्चा, और तो ये कौन जब आप ये कहते हैं बच्चे से कि मैं भी तुम्हारे फ्रेंड से मिलना चाहता हूं, इट विल गिव अ कॉन्फिडेंस टू यू, क्योंकि आपने उसकी पसंद की हुई चीज को इंडोर्स किया, उसके कैरेक्टर के अंदर ये सिग्नल बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता। कैसे कर सकते, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है जाए बोले तुम मैं मीटिंग में जा रहा हूं मुझे अपने दोस्त से मिलाना और उससे कह दो कि मैं स्टैंड पे आऊंगा ताकि उसके पेरेंट मेरे मैं उनसे भी मिलूंगा। गो एंड मीट, ये बर्थडेज होती है बाल ज्यादा जो क्लोज फ्रेंड से बुलाते हैं तो आप जाए, क्योंकि देखिए उसके घर का माहौल उसके पेरेंट का थॉट प्रोसेस क्या है कि मेरे बच्चे ने जिसको बेस्ट माना है वो वाकई उसके लिए बेस्ट साबित होगा दुनिया और आखिरत के लिए या नहीं। अगर तो खुद जब मिलेंगे आपने मिलना इसलिए कि आपने चेक करना उनके घर का उनके पेरेंट्स की खुद क्या साइकोलॉजी क्या नफ्सियात क्या तरबियत के हवाले से भेजा है उनका, अगर नहीं है तो फिर आप सॉफ्टली कट डाउन करना शुरू करेंगे उस सर्किल को जिसको उसने बेस्ट बना लिया। टेक्निक बड़ी टेक्निकल चीजें क्योंकि हमारे पास इन चीजों का टाइम नहीं है कि कैसी चीजें होती हैं कि आप अगर किसी बच्चे की कंपनी को डिसएंगेज करके रीकनेक्ट कर रहे हैं किसी पॉजिटिव कंपनी या किसी पॉजिटिव फ्रेंड के साथ तो कैसे करना है। टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, टाइम इस लिहाज से कि आप सब बिजी हैं तो आपको ये सब चीजें कम होंगी जब टाइम देंगे तो टाइम निकालना आजकल बड़ा मुश्किल है। तो सबसे क्रिटिकल मरहला ये आ जाता है कि बेसिकली जब हम मेंटोरिंग करें तो हमारे पास टाइम नहीं होता उन चीजों का, तो ये चीजें तरबियत की इसलिए हैं कि बेसिकली जैसे हमने लास्ट काफी एक्सप्लेन किया था इस पॉइंट को क्यों जहाज करार दिया खवातीन के लिए कि तरबियत करना औलाद की मैदान जंग में जो राह खुदा में शहीद होने वाला शहीद है उससे ज्यादा मतलब कई हदीस में तो कई गुना ज्यादा की बात की 70 शहीदों के जैसे सवाब है, ठीक है ना, एक भी नहीं 70। तो ये क्या चीजें हैं, ये चीजें इम्पैक्ट बताती हैं इसकी इंपॉर्टेंस का। आपने जिस तरह हमने कोरिलेट किया था कि एनालाइज जब आप कोई चीज पढ़ा करें कुरान की या रिवायत की तो उस पर जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें कि क्या फलसफे हैं इसके पीछे, जिस तरह बात की मैदान जंग में जाने का मतलब अपने सारे कंफर्ट को छोड़ देना अपनी सारी प्रायोरिटीज को एंड यू आर रेडी टू गिव योर ओन लाइफ इन द पाथ ऑफ अल्लाह। तो तरबियत यही है, आपको अपनी सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी बच्चों की वजह से, अपने आराम को भी अपने कंफर्ट जोन को भी। जैसे हम कहते हैं कि मुझे सोने दो, दिन भर काम कर गए थक गई हूँ 5 मिनट सुकून से सोने दो, ठीक है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। तो इन चीजों को ये जिस तरह जैसे बात की मैदान जंग के अंदर जब कोई मौजूद है तो क्या नींद और क्या आराम, वो तो जहां मट्टी जहां पहाड़ वहीं पर बेचारा 10 मिनट 15 मिनट लेट के, ठीक है ना, अंदाजा लगा मतलब तो उसको रियल टाइम में लेके जाए तो फिर देखें आप कितने मामलात हो सकते हैं जो आप अभी घर में बैठे हैं ना सर्दी ना गर्मी ना कोई मसला नहीं वहाँ तो आपके पास ना कोई छत ना ये ना वो, आपको सब चीज़ें ऐसी करनी, लिमिटेड एक बॉटल दी है पानी के लिए, पीछे से जब आपको सप्लाई चेन मिलेगी तो इसी बॉटल में आपने सर्वाइव करना। सकता है कि पीछे कोई मसला हुआ है, बीच में डिस्ट्रेक्शन आ गई, रास्ता कटा हुआ है, तो पानी उतना ही है बस जितना है, इसी में बजू इसी में वो आसानी चीज। जब आप रियलाइज करेंगे तो अंदाजा होगा कि तो इसका सवाब दिया गया, तो इसके माने तरबियत करना मामूली चीज थोड़ी है कि बच्चे शादी हुई बच्चे वो खुद ही पल जाएंगे एडमिशन करा दिया, नहीं। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू बी थॉटफुल कि भाई क्यों कैसे। आप विजिलेंट रहते हैं, जो मास्क पे खड़ा होगा क्या देखता है, वो दूरबीन लेके वो देख रहा होता है कि कब दुश्मन की नकल मकानी क्या हो रही है, नकल हरकत क्या है उसकी। तो बच्चे की नकल हरकत देख रहे हैं आप, किससे मिलके आया है, किस अंदाज में आया है, क्या लेके आया है, क्या बोल रहा है वो, क्या उसकी प्रेफरेंसेस बनती जा रही है, कहां इंक्लिनेशन हो रहा है। यू हैव टू बी विजिलेंट एंड डील इट इन अ राइट वे। तो ये सब चीजें इतनी आसान नहीं है। बच्चे के अंदर जो है वो चेंजेस आ रही होती है, जैसे हमने बात की कि उसके अंदर जो थॉट प्रोसेस डेवलप होना शऊर का शुरू हो गया, तो बहुत सारी चीजों से इम्पैक्ट लेता है, मुआशरे की भी और इमोशनली भी। जैसे हमने लास्ट टाइम रेजिलियंसेस की बात की थी, तो उसके अंदर हमने सोशल रेजिलियंस की भी बात की थी। तो बच्चे को अगर आपने लीडर बनाना है तो इस एज से उसको आपने स्ट्रॉन्ग सोशल रेजिलियंस क्रिएट करनी है उसके अंदर, कि वो बेसिकली प्रेशर बियर करने के काबिल बन सके। अभी प्रेशर नहीं डालना उसके ऊपर, ठीक है ना, अभी यानी जो छोटा बच्चा उससे वेट लिफ्टिंग नहीं कराएं आप, मेडिकली इट इज रॉन्ग, क्योंकि अभी उसकी फंक्शन डेवलप होने जा रहे हैं। तो अगर आप कराएंगे तो वो फिर आप आगे के लिए आप जाएं पूरा नेट पे तलाश करें, वो कौन से वर्ल्ड के बड़े बड़े एथलीट हैं जिनकी डेथ 30s में हुई है यंग एज में, मार्शल आर्ट के, वेट लिफ्टिंग के, रनिंग के। हालांकि वो तो बैलेंस डाइट खाते हैं, ट्रेनर के साथ रहते हैं, 8-9 घंटे एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फिट रहना चाहिए, क्यों मरे इन लॉजिक्स की वजह से कि वो बचपन है। आप अक्सर एक काफी वायरल है वो, 3 साल की एज से उसने वेट लिफ्टिंग सिखाई अपने बच्चे को, अभी से 7 साल का है तो खूब मसल वसल बनी है उसकी, देखें जिंदा रहे इतनी देर में देखिएगा, तो सत्या उसकी डर चार 25-26-27-30 साल में होता है। जो चीज़ के खिलाफ नेचर जाएंगे उसके इम्पैक्ट आते हैं, तो नेचर को फॉलो करना सीखे। और नेचर बड़ी आसान है, नेचर इस्लाम क्या है, इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम दीन अक्ल है, अक्ल फितरत दोनों बहम है। यानी अगर आप फितरत को अकली कराइन में परखेंगे, यू विल गेट द आंसर, आपको किसी जगह जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फितरत को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें अकल की बुनियादों पर, यू विल गेट ऑल द आंसर्स विदाउट रीडिंग एनी रिसर्च और सिटिंग विद द स्कॉलर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को नेचर के साथ जब आप हमान करते हो, नेचर आपको बताइए कि आपकी क्या नीड्स हैं और उसको डील कैसे करें। चूंकि इस पोल्यूटेड माशरे में तुम्हारी नेचर के ऊपर क्या पड़ गए और अकलों पे क्या पड़ गए, दबीज पर्दे पड़ गए, तो इन पर्दों को हटाएं तो फिर आपके सामने रिवील हो गए व्हाट इज द रियलिटी, हकीकत। यानी जिसे हम कहते हैं हकीकत शनासी और मामलात को और हकाइक को दर्द करना, तो उस वक्त होगा जब वो अकलों और फितरत पे मौजूद गर्द और पर्दों को हटाया जाए। और उसके लिए क्या कुलिया मौजूद है, खुद रसूल ने इसका आंसर दिया है कि क्या होता है कि कुलूब तुम्हारे क्या हो जाते हैं, जंग आलूद हो जाते हैं। अच्छा, ये इंटरप्रिटेशन भी अलग है फिर, हम क्योंकि टाइम ज़्यादा होने लगता है हम जब दूसरी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं साइंटिफिक वे में, तो क्यों रसूल ने जंग का इस्तेमाल किया है लफ्ज़, ये भी एक थॉट क्यों, सही है। तो ये जो हमारे फरामीन हैं ये उन जंग को ख़त्म करते हैं। तो हम सब जिस मुआशरे में रहते हैं, अगर हम चाहते हैं तो हम आइम्मा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे तदब्बुर तफक्कुर करें, पढ़ें उसको, ताकि पता लगे कि भाई किस चीज़ की प्रॉब्लम का वे आउट कहाँ पर है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि इस एज ग्रुप के अंदर बच्चे जो हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ टीन एज में पीक पे पहुँच जाती है, लेकिन इसका आगाज यहाँ से होता है। किस चीज़ का थर्ड चीज़, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कि मैं यह खुद करना चाहता हूँ। जैसे छोटा बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है तो वो एक्सप्लोर करते हैं, जैसे बात की थी कहीं हाथ मारेगा चीज़ों को मुंह में लगे करेगा, वो एक्सप्लोरेशन की वजह से कर रहा है, ये एक्सप्लोरेशन की वजह से नहीं कर रहा। ये अब थॉट जो उसके हमने बात की, जो पहला पॉइंट बता दे कि वो शऊर का पहला स्टेप ईजाद हो गया उसके अंदर, तो वो उसको ट्राई करना चाहता है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी अभी यहाँ पर इनिशिएशन है और उसके पीक कहाँ पर है, जब हम टीनेज पे जाएंगे तो फिर वो पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपने उन पॉइंट्स को कैसे डील करना है, कि वो ट्राई करेगा, जो चीज आई है वो ट्राई करना चाहता है। ट्राई करने का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस हो जो ट्राई करेगा। तो अगर बच्चा आके आपसे कोई ऐसी चीज की बात कर रहा है जिसे आप समझते कि अभी इसके नुकसानदेह हैं, तो एक तो ये है कि स्ट्रेट अवे से नो, लेकिन नो से पहले अगर आप उसको बता दें कि इसके नतीज क्या हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहा है बजाय इसके के, क्योंकि एवरी नो 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 ये पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो जब जो मुख्तलिफ रिसर्च की गई ग्रुप्स बना के, तो जब उनको यानी बैक ट्रैक किया गया तो पता लगे कि बचपन में हर चीज़ पे इनको मना किया जाता था नो, तो इनकी पर्सनैलिटी इसी तरह बिल्ट हुई है। तो लिहाजा अब वो या तो पैसिव पर्सनैलिटी के शिकार हो गए, मुआशरे से कटना चाहते हैं, या फिर रिजिड हो गए हर चीज़ को डिक्टेटर, जो डिक्टेटर्स पे जाएंगे आप तो ये सब चीज़ें मिलेंगी पीछे, ठीक है ना। फिर वायरल बहुत सारे मिसालें, लेकिन टाइम आगे तो ये आपने थर्ड पॉइंट बेसिकली आपने उसको इंडिपेंडेंस को जो लिमिटेड दायरा है बना के उसको इंडिपेंडेंट कर दें, ठीक है ना। वो दायरा खुद आप बजाय इसके कि वो दायरा बाहर जाके स्कूल में या कहीं और जो है वो खुद डेवलप करें, इसको आपने अपने लेवल पर खुद क्रिएट करना है। जब आप ये क्रिएट कर देंगे तो उसका फायदा क्या निकलेगा कि ये बच्चा जो है वो उसी बाउंड्री में रहेगा जिसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, किन दोस्तों के साथ उठना बैठना कर रहा है, क्या चीज़ें खा रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिगरेट नोशी की आदत पड़ना शुरू हो गई है, ऐसा तो नहीं कि वो गलत चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो जब आप उसको खुद बाउंड्री बना के दे देंगे तो वो उसमें इंडिपेंडेंट बोला हाँ ये देखो तुमने ये करना, ये टाइम है, ये जगह, ये चीज़ें, गो अहेड, फाइन। अब वो उसको फील होगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन ये करने के लिए इससे क्या मैंने कि आपको भी उन चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दे के मैनेज करना होगा, ठीक है। अच्छा जनाब, इसी तरह जो है वो एक और पॉइंट ये है, जो जिस तरह कुरान को अगर आप देखेंगे तो कुरान के अंदर तकरीबन चार जगह जो है वो लफ्ज इस्तेमाल है कुलसीर फिल अर्ज, निकलो और दुनिया देखो। अच्छा, यानी ये आपने अल्लाह ताला ने जो ये जुमले इस्तेमाल किए तशवीश दिलाई, यानी शौक दिलाया कि जाओ निकलो देखो दुनिया को, और चार जगह बोले कि तुम निकलते क्यों नहीं, टोटल आठ जगह इस तरह। सबका खुलासा ये कि भाई एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है। अब इससे मानेंगे आप बच्चों को मसलन बहामास और जो है वो रियो डी जेनेरो और पलां बीच पे ले जाके जो है वो नहीं, इससे मराज है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं अगर आप हैं ले जा सकते हैं, ले जाएं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। अगर आपकी इतनी है कि आप नारंग कहाँ लें तो वहाँ ले जाएं, अगर आपकी इतनी जेब इजाजत नहीं है तो आप यहीं पर ही एक्टिविटीज़ की दसियों चीज़ें वहाँ ले जाएं, इसको निकालें, चूँकि वो दुनिया देखना चाहता। जब वो दुनिया देखेगा तो उसका मेंटल होराइजन एक्सपेंड होगा। क्यों, वो जो पुराने जमाने का क्या कहावत है ना कि घात घात का पानी पिया हुआ है, क्या माने इसके, यानी दैट पर्सन हैज एक्सप्लोर्ड लॉट ऑफ प्लेसेस। जब आप नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं तो आपका आपको नई चीजें पता लगती, तो आपके दिमाग में नई मेमोरी सेटअप होती है, आपका विजन, आपका एक्सपीरियंस, आपका जहनी विजदान बुलंद होता है, बढ़ता है, फहम फरासत आपकी ग्रो करती है। तो बच्चे को जब आप इस एज में ले जाके एक्सप्लोर करवाएंगे अपने अतराफ की चीजों को, मसलन कितने ऐसे अफराद होंगे जो मसलन कराची से नहीं निकले, उन्हें कराची के एरियाज भी अभी तक विजिट नहीं किए होंगे। रीजन इसी एक जो हैबिट बनी है घर की कि हमने अपने बच्चों को निकलने नहीं दिया, बहुत अच्छी बात थी कि निकलने नहीं दिया उनको, कि गली में टाइम डब्बू और गेम इन चीज़ों पर ना स्पेंड करें, बहुत अच्छा किया। लेकिन क्या बच्चे को लेके आप अतराफ में निकले शहर के अंदर ही, उसे पता तो हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, इंडिपेंडेंसी के लिए उसको ये तो पता होगा बेसिकली अगर मैंने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना है तो मुझे अपना बस रूट तो बताओ। अगर कल को कहीं मजलिस, कहीं रिश्तेदार, कोई डेथ, ये वो, तो मैं मोहताज तो ना बैठा हूं। अभी तक वो खवातीन है हमारे माशरे के अंदर जो खुद जिनके बच्चे भी अब 15-15 साल का हो गए, नहीं भाई मुझे तो अकेले जाते हुए, क्यों, कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया गया उनको, पेरेंट्स ने उनको। अगर जिनकी गाड़ियां हैं कोशिश करें कि बच्चों को महीने में एक दफ़ा चिंची और बस में बिठा के सफ़र अपने साथ करवाएं, इट विल गिव अ कॉन्फिडेंस टू देम, ही विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैंने एक पर्सनली एक्सपेरिमेंट किया है कराची के अंदर, ऑन गोइंग है, कि डिफरेंट टाइम फ्रेम मॉर्निंग सुबह रात के अंदर ना चेक करूँ, आज के यानी पोस्ट कोविड बात कर रहा हूँ, कि लोगों के अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस और यानी चूंकि क्राइम रेट भी ज़्यादा है एंड इट इज़ रिस्की बट आई डिड इट, कि लोग जो हैं आप बगैर किसी उसके ट्रांसपोर्ट के सफर करें और नाइट टाइम के अंदर 10-11 बजे डिफरेंट एरियाज नॉर्थ से लेके गुलशन ये वो सब के लोग आपको लिफ्ट देते नहीं देते ऑलवेज इज रिस्की। और ये आप एक्सपेरिमेंट जो है वो एक सूटेड बूटेड अंदाज में भी कैजुअल ड्रेस में भी और बहुत खराब अंदाज में एंड देन जब आप बैठे आस्क द पर्सन कि भाई क्यों दिया आपने लिफ्ट। तो कंक्लूजन ये निकला कि मुआशरे में अभी भी लोग हैं कि जो नेकी करना चाहते हैं डिस्पाइट कि बेसिकली इतनी हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, 66,000 मोबाइल छीने, सीपीएलसी की रिपोर्ट देख लें आप, 16,000 गाड़ियां छीनी हैं पिछले 8 हफ्ते के अंदर, ठीक है ना, जो उस पर उन्होंने क्लेम किया कि 73% अपना लास्ट रिपोर्ट थी 73,000 की, हम 66 पे आ गए तो हमने इम्प्रूव किया क्राइम। तो ये वो जिसे कहते हैं ना कि स्टेटिस्टिकल मैनिपुलेशन कहलाती है कि हमने इम्प्रूव किया क्राइम रेट को, जो मीडिया रिप्रेजेंट करता है ना, ये देर इज अ वे कि वो बता रहे कि हमने 73,000 से 4,000 रुपए तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज अ रॉन्ग वे टू इंटरप्रिटेट थिंग्स क्योंकि वर्ल्ड वाइड मीडिया ही कर रहा हो। खैर, तो खुलासा ये कि बेसिकली लोग नेकी करना चाहते हैं, रीजन इज दैट कि बेसिकली आपके पास अंदर से जो इंस्टिंक्ट है वो आपको मजबूर करता है। कुछ लोग डरे हुए होते हैं, ठीक है ना। एक दफा ऐसा भी हुआ कि दो बंदे जो है वो मतलब दो बंदे बैठे हुए थे, घुमा के गाड़ी मतलब आए और बोले बैठे, फिर जो बीच में बैठा समझा कि आपके पास जो चीजें निकालना है, मस्कर आया मैं खामोश रहा, कहें आप समझे नहीं, मतलब क्या चीज, कहने मोबाइल और जो चीजें निकाल लें आप, मिला ही नहीं। तो कहें यार वो हम मजाक कर रहे थे, हम बताना चाह रहे हैं कि भाई ये आज का दौर खराब है, तो जरूरी नहीं कि हर शख्स अच्छा हो। तो मतलब आपने बहुत अच्छी बात की और अच्छी चीज है, तो फिर पूछे मैं डरे नहीं आप, ना डरूं किस बात से भाई, अगर कोई मोबाइल चाहिए आप निकाल के दे देते हैं और अगर ना हो क्या करेंगे, नहीं देंगे, पैसे होंगे दे देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे, तो उसमें डरने की क्या बात है। कैसे हुई चीज, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसा है कि बचपन से आप इनबिल्ट बच्चों को माहौल बोल दें कि आप डरे नहीं। जैसे हमने बात की कि अभी पीछे छिपकली आकर ऊपर से गिरे, देखें हालत क्या होगी माहौल के अंदर, वो जो छिपकली अगर उसे पाँव हट देंगे तो वही उसे हम डरते हैं, जो लाल में उसे डर रहे हैं, क्योंकि बिल्ट किया है हमने सिस्टम को अपने थॉट के अंदर कि इतनी इतनी मामूली चीज से हम डर जाते हैं। मतलब कोई गन रखे आपके ऊपर और आप देखेंगे कैफियत क्या होगी, और अगर आप उसमें चिल रहे नॉर्मल रहे, क्योंकि अगर हमारे अंदर ये चीज मौजूद है कि हमें मरना है फिक्स टाइम, तो फिर ये कोई एक हमारे वर्ड भी और वायरल क्वेश्चन है, तो जब जो मौत आनी है वो आनी है अपने टाइम पे, तो किस बात से हम पे डरते हैं, किन चीजों से डरते हैं, तो इसके माने तौहीद की टेक्निकली कमी है, तो जो चीज होनी वो होगी, ठीक है ना। तो अक्सर जैसे जब डिस्कशन करते हैं पॉइंट्स में कहते हैं कि भाई आप तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कहाँ होती है, जो आपके अफवाज के इदारे होते हैं, तो आप मुझे बताते पाकिस्तान के अंदर GHQ से लेके कांगड़ा बेस से लेके रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर से लेके PF के अटैक नहीं हुए जिसमें कई नुकसान हो, तो अटैक तो वहां पे जहां पर सिक्योरिटी हाई है। तो इन चीजों को थोड़ा इसके मायने नहीं कि आप वो जाएं, यानी बस के सामने खड़े के बोले कि मेरी मौत तो लिखी है और अगर बस टकराएगी मुझसे तब भी मैं जिंदा रहूंगा, ये काम नहीं करेंगे आप, क्योंकि दूसरा कौन भी देगा, अपने आप को हलाकत से बचाना है, अपने आप को उन चीजों से जहां पर खतरात है महफूज रखना है, तो चीजों को हमें राइट वे में समझ, तो बच्चों को आपने कॉन्फिडेंस देना है, तो आपको छोटी बाहर के स्कूलिंग के अंदर जब Grade 3 बच्चे होते हैं तो वहां पर यानी दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्कूल ट्रेनिंग कि वो बच्चों को लेके जाते हैं लाइब्रेरीज के अंदर, ठीक है, बच्चों को रोड पार करवाते हैं, पूरी टीचर होती है जिसमें क्लास, तो एक टीचर आगे होती है एक टीचर पीछे होती है, साथ में लेके चलती है क्योंकि वहाँ पेडेस्ट्रियन बना होता है, फिर वो वहाँ पर चूंकि आपने अगर क्रॉस करना सिग्नल तो वहाँ बटन दबाते हैं, फिर वो लाइट बनी हुई आती है, बीप बजती है तो आप क्रॉस करें, बच्चों को हर बच्चे से प्रैक्टिकली करवाती है। अब निकल गए स्कूल के अतराफ में जितने 4-8 आधे एक घंटे की एक्टिविटी की, जितने सिग्नल हर बच्चे को बोलेंगे तुम सिग्नल प्रेस करो कब चलना, हर एक को लीड बनाएंगे, जब तुम लीड करोगे बाकी 15 बच्चों को, तो हर को लीड करना भी बताया जाएगा ताकि हर बच्चा जो लीड करेगा फिर आगे बटन दबाएगा, अगले बार सिग्नल पे दूसरा लीड बन जाएगा वो आगे बढ़ेगा, फिर बोलेगा गो एट, फिर चेक करेगा वो सब आगे बच्चे, फिर बोलेगा यस ओके आ जाओ, उनको इस स्टेज से फिर बस में बिठा के ट्रेन ट्राम में कैसे बैठते हैं, टिकट परचेजिंग सिखाई जाती है उनको, क्योंकि वो वेंडिंग मशीन बनी होती है तो खुद इस एज में। उससे क्या होता है कि वहां पर 10, 11, 12 साल, 13 साल के अंदर बच्चे खुद पूरा पूरा यूरोप घूम लेते हैं अकेले बगैर पेरेंट्स के, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस वहां से सिखाया गया। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज के बाद, शादी होने के बाद भी इस नौयत के होते हैं कि अकेले ट्रेवल तो दूरी है, पता ही नहीं कि कौन से रूट पे कौन सी बसें चल रही है। इन्हें इतना जनरल नॉलेज भी अपने सिटी की काम है, यही नहीं पता कि कहाँ पर कौन सी बस जाती है, कौन सी चिंची कहाँ जाती है, ठीक है ना। अरे बस तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप उनसे पूछेंगे, आई कैन टेल, आप चाहे टेस्ट कर लें, पूछेंगे किस एरिया में, बता दूंगा आपको कहाँ उतर के बस कौन सी छोड़ के अगर चिंची जाएगी तो कौन सी चिंची जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें क्या देती हैं आपको, ये चीज आपकी हर चीज आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए अहम है। यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए, आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें कैसे आएंगी, जैसे मैंने मिसाल दी कि आप बच्चे को अगर ग्रॉसरी करने चाहते हैं तो लेके जाएं, ठीक है। अब जैसे टिप दे दूं, अगर आपने ग्रॉसरी करनी, इस एज के बच्चे को आप खड़े हो जाएं और उसे बताएं कि बेटा ये चार ब्रांड रखे हुए चाय के, तुम बताओ कौन सा वाला लेना चाहिए। अब उसे क्या होगा, वो फील करेगा कि ये मुझे इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी उससे राय लेना इस एज में आप स्टार्ट कर दें, तो यू विल सी के जब वो 12-13 साल का होगा उसकी पर्सनैलिटी कितनी अहम होगी और आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेगा। जो आप पेरेंट्स आगे कहते हैं ना कि बात नहीं सुन रहे, उसमें एक रीजन बेसिकली यहां पर आके मुंतई होता है कि हम बच्चों को क्या करते हैं कि बच्चों को वो फेज जिसमें उसने बिल्ट होना है उस फेज के अंदर सप्रेस कर देते हैं उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी स्किल्स को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह जो है वो जैसे हमने बात की कि आप बाहर लेके निकले, बताएं उससे उसका विजन डेवलप होता है, ग्रूमिंग होती है, जैन खुलता है, 10 लोगों को वो देखता है तो 10 चीजें सीखता है, यानी डिफरेंट कल्चर्स को आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि इस कल्चर में मतलब जापानीज कल्चर क्या डिफर करता है चाइनीज कल्चर के साथ, और चाइनीज कल्चर कैसे डिफर करता है कोरियन कल्चर के साथ, और कोरियन की जो वेस्ट बेल्ट है वो नॉर्थ से कैसे डिफर करती है, उनके कल्चर और नॉर्थ में क्या डिफरेंसेस हैं, और ये जो है कैसे डिफर करते हैं फिलीपींस के साथ, एंड देन जब अरब बेल्ट में आए तो क्या डिफरेंसेस हैं मिस्री अरब की वर्सेस मोरोकन अरब के साथ, मोरोकन अरब कैसे डिफर करते हैं नाइजीरियन और सूडानीज के साथ, सूडानीज कैसे डिफर करते हैं सऊदीज और सऊदीज कैसे डिफर करते हैं कतर और बहरीन के अरब के साथ। तो जब आप देखेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, देन यू विल सी एंड थिंक एंड योर थॉट प्रोसेस विल बी स्टार्ट वर्किंग। जितना अर्ली करेंगे ये काम उतना ज्यादा बच्चा जो है वो यानी उसकी थॉट प्रोसेस जो है वो एक्सपैंड होगी, ठीक है ना। फिर बच्चे के अंदर इसी फेज में कोशिश करेंगे टीम वर्क, ये जैसे हम आजकल हम जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करते हैं उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है कि भाई हाउ टू चूज अ राइट टीम एंड हाउ टू मेक योर टीम इफेक्टिव। ये कहां से पैदा करना है, आप इस एज में बच्चों के अंदर टीम बिल्डिंग और टीम वर्क बिल्ड कराएं। मिसाल 5 बच्चे हैं, सब लड़ते हैं आपस में, ये मेरी पेंसिल बॉक्स से तो वो लड़ता है, वो उनकी पेंसिल बॉक्स से तो वो लड़ता है, क्यों कि बेसिकली आप अगर टीम बिल्डिंग सिखा देंगे दे विल लाइक दिस। तो हम जो ये टीम बिल्डिंग नहीं करा रहे, टीम बिल्डिंग नहीं सिखा रहे, इसलिए बच्चे क्या होते हैं, अम्मा मेरा पेंसिल बॉक्स ले लिया है, अम्मा मेरी कॉपी ले ली है, तुम मेरा रबड़ दे दो, मैं तो अपना शार्पनर नहीं दूंगा या दूंगी। रीजन टीम वर्क, टीम बिल्डिंग को, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि टीम बिल्डिंग होती कैसे, टीम चूज कैसे करने हैं, टीम पे इफेक्टिवली वर्क कैसे करना होता है। तो जब नहीं होगा तो इसलिए क्यों सास बहू नन लड़ते हैं आपस में, क्योंकि सिखाया नहीं गया। तो अब वो बड़े हो गए तब भी विदाउट टीम बिल्डिंग के साथ, तो इसलिए जब टीम बिल्डिंग होती है कभी सास बहू के झगड़े ना होते, कभी नन भावज के झगड़े ना होते, कभी बारह जितने भी इस तरह के रिलेशन है उसमें झगड़े ना होते। नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली जो जहन में रखना चाहिए बच्चों के हवाले से वो ये कि इस एज की हम बात कर रहे हैं 6-8 साल के दरमियान, कि इन बच्चों के अंदर जो है वो ये भी एक चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है और जो कि टीन एज में ज़्यादा बढ़ जाती है, वो क्या है कि जिसे हम कहते हैं सेल्फ लाइकनिंग, यानी उनको खुद पसंदी जिसे दूसरे लफ्ज़ों में का उनसे डेवलप होना शुरू होता है। मैं फिर दोबारा से कनेक्ट करता हूँ, ये चीज़ कुछ चीज़ें जो इस फेज में स्टार्ट होती हैं इसकी पीक टीन एज पर जाती है। फिर तो टीन एज में खुद पसंदी जो है वो अपने एक किस्म के उरूज पर होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये वाला वो पॉइंट है जिसको हम कहेंगे कि बेसिकली अगर आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे डेफिसिट्स डेवलप होते हैं बच्चे के अंदर, जिसमें से एक क्या है, उसके अंदर मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस ईजाद हो सकते हैं। एक जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, जैसे अभी हम खड़े होते तो एक ने कहा कि बेसिकली एक बच्चा जो है वो ये जितने घर में बच्चे हैं उनके, तो वो एक बच्चा ही फील करता है कि आप उसे टाइम नहीं देते और उसे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। अब हमें ये देखना पड़ेगा वाकई नहीं मिल रही है, जैसे हमने कहा कि हम तो अदल कर रहे हैं, तो फिर ऐसा ना हुआ हो कि बच्चे के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो। जब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है तो वो चाहता है कि हर चीज़ उसकी तरफ डाइवर्ट हो, हर चीज़ जो फीलिंग ऑफ पोजिशन है, यानी जैसे कहते हैं किसी चीज़ को अपने पास रखने की जो जज्बा है ना, इसे फीलिंग ऑफ पोजिशन कहते हैं, वो उसके लेवल्स बहुत अप होते हैं ऐसे लोगों के अंदर। यानी वो हर चीज़ कहता है मेरी है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। तो ये जो इस्लामी तो ज़ाहिर बात है बीमारी है जिसको हम खुद पसंदी कहते हैं, तो इसके अंदर जो एट्रीब्यूट डेवलप होता है उस इंसान उस शख्सियत के अंदर वो ये है कि बेसिकली वो दूसरों को कमतर समझने लगता है। वो बच्चा क्यों कह रहा है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दे रही हैं, मुझे कम दे रही हैं, मेरी बात नहीं सुन रही, कि वो उसको इन्फीरियर समझ रहा है, तभी तो आप कि मेरी बात सुनो, क्यों सुनो, कि वो मुझसे कमतर है भाई, पहले मुझे मैं बड़ा हूँ। बैक एंड उसको नहीं पता होगा ये, लेकिन बैक एंड पे क्या है, ये वो चीज़ डेवलप हो गई उसके अंदर, इसको हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दूसरों को फिर अपने से इन्फीरियर समझने लगता है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लेंगे ये चीज़ें कितनी बारीक और हसास हैं। यानी जो इस्लामी तस्किया नफ्स है वो इतना आसान इसलिए नहीं है कि इनके आगाज़ बेसिकली इस एज से स्टार्ट हो रहे होते हैं। इनके जो रूट्स हैं वो बेसिकली, यानी क्यों जो है वो, जब हम उरफा की अगर आप जो भी बड़े बड़े उरफा हमको देखेंगे तो उन्होंने ये जो इरफानी मराइल हैं वो बुढ़ापे में तय थोड़ी की हैं, जवानी की औज में किए हैं उन्होंने। मतलब इमाम खुमैनी, कितने लोगों ने इसराओ सलात पढ़ी हुई है, ठीक है ना, एक ठीक है पढ़ें आदाब सलात नहीं, वैसे इसका चलो इसरारो सलात ठीक है, और तर्जुमा उर्दू में आप तो उसमें जो है वो मफाहिम देंगे आप, पहले तो उसमें जो फलसफा है वो अपर लेवल का, फिर उसमें उरफानी मताले में और से अपर लेवल का, खुद वर्डिंग बड़ी मुश्किल है ट्रांसलेशन के बावजूद भी, जो आपको एक दफ़े में समझ में नहीं आती। यानी आपको 40-50 साल की एज में वो उर्दू समझ में नहीं आ रही, मतलब तो दूसरी, यानी उर्दू वर्ड की बात हो रही है, वर्ड इस्तेमाल किए उन्होंने, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए हैं फलसफे की, इरफान की, खुद सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो हैं वो बड़े सलीस नहीं है, बल्कि बहुत ही अमीक किस्म के जो है वो फारसी अल्फाज उसके अंदर, जो को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो वो भी ज़ाहिर बात है मुश्किल ही बनेंगे। तो पता है किस एज में लिखी थी, जी 27 ईयर्स की एज में लिखी थी वो इरफानी मतालिब की किताब। मैं इसलिए कह रहा हूँ पढ़ें तो पता लगेगा कि वो है क्या नमाज जो हम पढ़ लें, और वो बताई गई है किसने पढ़ी है, खाशीन की नमाज शहीद दस्तगर की, वो छोटी 70-75 थी, पता है नमाज किसने, मोहसिन कराती की किताब पढ़ी है नमाज के बारे में 1001 नुकात। तो आप देख लेंगे जो बुनियादी फंडामेंटल है जिसपे कहते हैं ना कि दीन जो है सबसे पहले सवाल नमाज का होगा, और 5 रुकन में से बुनियादी रुकन नमाज, नमाज ही अगर सही नहीं तो फिर उस लेवल की किताब जो है वो औज जवानी में लिखी है। तो जब लिखी तो फिर एक और किताब लिखी थी उस एज में, तो जो उनके उस्ताद थे उन्होंने कहा था कि जब वो अक्सर उस्ताद के पास जाते तो बोलते मेरे पास क्यों आते हैं, तुम्हारा आप तो खुदा ने पकड़ लिया है, जो इस इरफान के लेवल पे आ चुका हो तो उसे उस्ताद की जरूरत थोड़ी, तुम यानी तुम्हारा हाथ आप खुदा ने पकड़ लिया, तभी तो इस काबिल हो कि इस दर्जे की किताबें लिख रहे हो। तो क्या माने, जब जवानी पीक पे आप इस लेवल पे पहुंचे हो तो आवाज कहां से हुआ होगा, बचपने से। तो ये भूल जाए, हाँ मिसालें इक्का दुक्का मिसालें, जैसे खुद इमाम खुमैनी के उस्ताद ने जो म्यूजिशियन थे, साज बजा साज स्टूडिया बनवाने आए शहर में, किसी ने कह दिया क्या, उसने बोला कि ये बनवाना,
बोले कि पता ही साज है ये, कभी तवज्जो दी इस चीज़ पे कि जो खुदा ने चीज़ बयान की है उस पे भी तवज्जो दे के इसी तरह खो के जिस तरह साज में खो जाते हो, खोयो कभी उस बात दिल पे ले। कुरान पढ़ना शुरू किया, अब जब पढ़ना शुरू किया तो फिर हर आयत असर करने लगी, तब्दील हो गए। 6-7 साल के अंदर मशहूर इल्मी शख्सियात में शुमार होंगे हो सके, तो ये भी है मिसाल है। लेकिन अक्सरियत मिसाल जो है वो रफा की वही है कि जो जैसे आपका बैजद, उनके जो करीबी दोस्त था, तो अक्सर जारी बात दोस्त होते हैं वो जानते हैं बचपने से कि भाई ये मामूली इंसान नहीं है, देखते नजर आ रहा होता है। तो एक दिन बड़ा उसने कसम दी और करीब 19 साल की उम्र थी उस वक्त इनकी ना, तो उन्होंने बोला कि बताएं करामात ये वो जो हैं क्या है क्या। फिर उन्हें एक शर्त दी कि जब तक मैं जिंदा हूँ अगर उसको बयान नहीं करूँगा तो मैं तुम्हें, तो मैंने बार गए सही तो शोधा से मुझे एज बताने का, मतलब एज 19 ईयर्स के लिए मुझे कुछ 21 तोहफे आता हुआ है, तोहफे मतलब करामात की बात हो, उनमें से एक कि जिस तरह मैं सामने से देखता हूँ उस तरह मैं पीछे से भी देख सकता हूँ। किसी चीज की बात हो रही है 19 साल, 19 साल में तो वे उसको बता रहे हैं कि 21 तोहफे अता हो चुके हैं बारगाह सैयदुश्शोहदा से, ठीक है ना। तो क्या माने हुए इसके, तरबियत कहाँ से स्टार्ट की होगी उन्होंने, जब 19 साल की उम्र क्या होती है आप जब इंटर कर लेते हैं टेक्निकल काम के अंदर, उस दौर में उस पहुंच पे के अब वो 21 की क्या आ जाओगे, तो वल्लभ आलम वायरल जो बताइए तो उनमें से एक ही है। तो बचपने से बोली सीना के बारे में सुनते हैं हम करामात बचपने से, वो साहिब इल्म हुए थे अल्लामा इल्म, कितने 9 साल की उम्र में इश्तियात के दर्जे में फायदे हुए थे सैयद इब्न ताऊस, जो जितने आप उठा के देख लें अभी किताबें उठाएं कोई भी जिसमें भी दुआ और अस्कार लिखे हुए हैं उसमें से मेजॉरिटी के आगे लिखा होता है सैयद से नकल है, जान लगते सैयद है इसके माने सैयद इब्न ताऊस। अक्सर लोग इनके पास आते थे पूछते थे कि क्योंकि ये रेगुलर इनके लिए मशहूर था कि इमाम से मुलाकात होती है इनकी, लोग सर लोग वजीफा पूछते थे कि हमें बताएं, तो जिनको बताते थे तो इमाम ख्वाब में मुलाकात करते थे उस शख्स से ना, तो अक्सर लोग आगे कहते थे जब भी ख्वाब में इमाम आते थे जिसको वजीफा बताते थे तो कहते थे कि मेरे बेटे को मेरा सलाम कहना सैयद इब्ने ताऊस। जो आपके पास जितनी अहादीस दुआएं हैं मुख्तलिफ, चाहे वो वज़ाइफ़ुल अबरार उठाएं चाहे मफाती उठाएं या दीगर जो सिर्फ दुआओं की किताबें हैं, तो उसके आगे लिखा हुआ है नकल है सैयद इब्न ताऊस। अगर पूरा लिखा जहाँ पूरा नहीं लिखा जहाँ लफ्ज़ सही लिखा इसके माने, तो वो शख्सियत है जिससे इमाम मुख्तलिफ दुआएं तालीम किया करते थे। कब, बलूगत से पहले। तरबियत कहाँ की होगी बचपन में अंदाजा लगा किस एज से स्टार्ट हुई, तो ये शख्सियात हैं बताती हैं हमें कि ये चीज़ें तरबियत का उनवान इस एज से स्टार्ट होता है, ना कि उस एज से कि जब हम खुद आयतुल्ला काजी तबा तबाही यानी जो खुद तमाम उरफा के सदी के उस्ताद, करामात ऐसी ऐसी के तालिबे इल्मों के साथ जा रहे हैं, शागिर्द पीछे चल रहे हैं, कुछ शागिर्द ज्यादा पीछे हैं, अचानक दरमियान में से जहाँ जा रहे हैं सांप आ गया, चीखे सांप खौफ के भाई बड़ा सांप, तो उन्होंने वहीं पीछे से इशारा किया कि ऐ सांप मर जा। अब जो इधर उधर तालिबे चले थे उसमें से एक जो नया नया तालिबे था उसने बोला कि भाई ये क्या है ये, तो वो तस्दीक करने पीछे गया, देखो वापस सांप जो है वो मरा हुआ था। जब वापस आके मिला उस्ताद से पूछा कि तुम्हें यकीन नहीं था क्या, शर्मिंदा वो जब मोमिन इस मरहले पे आ जाता है कि जो वो कहता है उसकी रजा खुदा कबूल करता, जो शख्स राजी पर रजाए खुदा کی منزل پر آ جائے. مختلف منازل ہیں, منزل توحید الگ ہے, منزل تسلیم الگ ہے, منزل رضا الگ ہے, منزل صبر الگ ہے اور منزل زہد الگ ہے. سب مراتب عرفان ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں. اب اس کو عرفان نے مختلف اپنے انداز میں بیان کیا. اگر آپ شیخ نصیر الدین توسی سے اگر آپ اسٹیجز پوچھیں گے تو انہیں 30 اسٹیجز میں تقسیم کیا ہے جو مراتب عرفان ہیں. شروع کے 10 مرحلے, آخری کے 10 مرحلے, بیچ کے 10 مرحلے. شروع کے 10 مرحلے ہیں, یہ وہ مرحلے ہیں جو بیسیکلی ہم نے بچپنے میں بچوں کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صاحب معرفت ناصران امام دنیا میں آئیں, معاشرے میں آئیں, تو ان مراتب کے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے بچوں کو دنیا میں لانا ہوگا, ان چیزوں کو فوکس کر کے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی. یہ تو ہم سائنٹیفک انداز میں چیزیں بتا رہے ہیں. تو اس طرف جب ناصر امام کی بات ہوگی تو اس کو وہ پہلو درکار ہے کہ جو اس معرفت کے درجے پر ہو, جس کو امام نے لشکر میں قبول کیا ہو, اس کے لیے ان چیزوں کو درک کرنا اہم ہے, ان مراتب کو اہم ہے. کہ جو مختلف مطالعے نے بیان کیا کہ اگر آپ جب آپ عرفانی مرائل کو طے کرتے ہیں تو آپ چار قسم کی سیر کرتے ہیں. سبھی ہم نے مثال دی نا, قرآن میں چار جگہ آیا کہ کل سیر فی الارض. تو اسی طرح ایک سالک, یعنی جو صاحب عرفان شخص راہ خدا پہ جب سفر کرتا ہے تو اس راہ سلوک کے اندر یہ کچھ سفر کرتا ہے, سیر کرتا ہے. تو ایک سیر ہے, بیسیکلی سیر الی الخلق فی الخالق. ایک ہے فی الخالق الی الخلق, ایک ہے خلق سے خدا کی طرف, ایک خدا سے خلق کی طرف, ایک خدا سے خلق اور واپس خدا کی طرف. تو اگر آپ نے خدا کی عنوان سے معرفت شناسی کرنی ہے تو خلائق کے ذریعے پہنچنا ہوگا. یہی بچہ ہی آپ کے لیے معرفت کا سبب بن سکتا ہے. یہ اطراف میں موجود رشتے دار ہی آپ کے معرفت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. وہ مشہور اس فلسفے کو نچوڑ کے خلاصہ دینے کے لیے جو بات کی جا رہی ہے کہ کیسے خلائق, یعنی خلق جو آپ کو چیزیں اطراف میں موجود ہیں, کیسے آپ کے لیے, جو ہم نے ابھی آقا طبع طبعی کی بات کی تو کافی اب نیٹ پہ کئی دفعہ نصرت بخاری بتا چکے ہیں, ریکال کر دیتے ہیں آپ کو. جب ان سے ملنے کسی دوسرے گاؤں سے شخص کا پورا گروہ آیا, پوچھتا پوچھتا پہنچا تو جس گھر پہ دستک دی تو ایک پوچھا کہ کون, اندر سے جب آواز آئی تو انہوں نے بولا کہ آقا طبع طبعی سے ملاقات کرنا ہے دور سے. وہ جو عورت تھی وہ برسنا شروع ہو گئی, کوئی وقت نہیں ہے, جب دیکھو کوئی نہ کوئی آتا, یہ وہ پتہ نہیں کس طرح کا شخص ہے جو زندگی یہ کر دی ہے وہ. تو وہ لوگ واپس پلٹے, سوچنے لگے کہ شاید غلط گھر تھا ہی نہیں. تو وہاں سے پھر سامنے سے آقا طبع طبعی آ رہے تھے, انہیں سلام دعا کی, بولا کہ ٹپلائی جو آپ کی نوکرانی ہے یہ بہت ہی بدتمیز ہے, سے گفتگو کا قرینہ تک نہیں ہے, ہم مہمان ہیں, اور بجائے اس کے ہم نے صرف اتنا پوچھا کہ آقا کا گھر یہی ہے اور موجود ہیں تو وہ اوپر سے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سنا ڈالی ہمیں. تو انہوں نے بولا خاموش, وہ نوکرانی نہیں بلکہ میری زوجہ ہے. اب وہ اور پریشان, تو انہوں نے بولا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو مراتب مجھے ملے ہیں وہ اسی زوجہ کے سبب ملے ہیں. کور ایسنس یہ ہے کہ گھر کے اندر, یعنی ایک میں ان تمام افراد کہ جن کے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, یہ ایک نچوڑ دے رہا ہوں اس عرفانی مطالب کا, کہ جو اگر گھر کے اندر والدین تک اگر آپ سے بد اخلاقی کرتے ہیں تو اسے نعمت سمجھیں. بد اخلاق والدین ہی آپ کے مراتب, اگر آپ اسے تحمل کر رہے ہیں نا, بد اخلاق ساس ہو, بد اخلاق سسر کو, بد اخلاق ماں باپ کو یا گھر والوں کو رضا خدا کے لیے, تو یہ آپ کی عرفانی مطالب کو اس تیزی سے بلند کریں گے کہ آپ کا اندازہ تک نہیں ہوگا. اور ہم ایک طنز کا نشتر برداشت نہیں کرتے تو جبھی تو یہ حال ہے. تو وہ طبع طبعی کیا کہہ رہے ہیں, یہ مراتب کیسے ملے مجھے, اسی زوجہ کی وجہ سے. میرے لیے آسان تھا کہ طلاق دے دوں, لیکن بولیں کہ نہیں, جب ہو گئے تو کیا, وہ چند سال زندگی ہے, خدا کے خاطر برداشت کروں گا کہ جب میں نے نکاح کے اندر اس کو لے لیا اور یہ کہہ کہ بیسیکلی سنت نبی کی سنت ہے تو خدا کے خاطر برداشت کروں گا. तो ये मुझे मरातिब मिला। कौन से मरातिब के? जिसके आका बैजत और जवाद आमली से शागिर्द हों। इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं इस पॉइंट की, किस कदर अहम तरीन चीज़ें हैं। तो इरफानियात के अंदर जो मामला है वो कोई और मौयत के हैं, इसको समझना, दर्क करना और फिर अमल करना, ये अलग अलग मदारिज हैं सारे। तो तहम्मुल मिजाजी अगर नहीं होगी तो ये रा उस शख्स के लिए फिर नहीं है। तहम्मुल करना बहुत की एलिमेंट है। अगर आप तरबियत और तस्किय नफ्स करना चाह रहे हैं, ये सब तस्किय नफ्स का वो उसलूब है कि जिसको हर सालिक को झेलना पड़ता। कहा ना कि जैसे क्यों तासीर आई जबान के अंदर आका बहजत के बारे में, 6 साल, कितने 6 साल क्या किया, जबान पे पत्थर रखा, जबान की तहारत और पाकिजगी के लिए जब आप कोई जिक्र पढ़े तो जिक्र अपने वजद और अपने तमाम हकाइक के साथ मुतहक्किक हो, जिसकी हकीकत आप देख सकें। अगर आप कहते हैं या राजिक तो राजिक को आपने मुजस्सम देखना हो तो आपकी जबान इतनी तहारत के साथ हो मुजस्सम नजर आएगा। अगर आप असमाए इलाही को मुतजस्सिम देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। अगर आप सामने वाले की रूह को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह जबान को उस लफ्ज की असल हकीकत को दर्क करना हो आपने, तो आपकी जबान उतनी ताहिर होने चाहिए तो आप उसको मुताहिर होकर देखेंगे। जैसे आता है तब तबाई ने क्या कहा, सांप मर जाओ, मर गया। जबान की तहारत के लिए जो मुख्तलिफ दर्जात होते हैं तो उसमें एक अहम तरीन उसकी प्योरिफिकेशन का वो लेवल हो कि जब आप उस लेवल पे आ जाए तो जो भी जिक्र करेंगे वो मुतहक्किक होगा, जो कहेंगे वो होगा। इसीलिए जब एक शख्स ने आगे पूछा ना कि इमाम की हदीस सुन के इमाम क्या चीज सही है कि अगर मोमिन इशारा करे तो वो दीवार अपनी जगह छोड़ दे, इमाम ने क्या कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इमाम ने इशारा नहीं किया और वो दीवार अपनी जगह से हिल गई। तो ये फर्क है एक मोमिन और अमीरुल मोमिनीन में कि अमीरुल मोमिनीन अगर एक चीज को इशारा ना भी करे, सिर्फ उस चीज के लिए आमादा भी हो जाए तो वो चीज, लेकिन मोमिन उस चीज के लिए प्रैक्टिकल काम करेगा तो वो चीज होगी। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो दुनिया के अंदर आपको समझनी पड़ेगा। दुनिया का असल हदफ यही है कि आप राय खुदा के मुसाफिर बने, और राय खुदा की मुसाफरत के लिए जो आपकी जिम्मेदारी बहसीत एक मुरब्बी यानी बहसीत वालिद या वालदा दी गई है, बहसीत टीचर दी गई है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इन अनावीन को मद्देनजर रखें, तब आप जाके उस राह पे चलने के अहल होंगे। चलने के अहल की बात हो रही, चलने की नहीं, अभी एलिजिबिलिटी है, वरना उस वादी में जाने के बाद नीचे भी बहुत तेजी से आते हैं। जितने तेजी से ऊपर जाते हैं उससे कई तेजी से नीचे आते हैं, जब तक कि आपको उसके असलूब का अंदाजा ना हो। ठीक है, हम क्यों नाकाम हो रहे हैं, इसलिए कि हमें ये नहीं पता था कि एक सोशल लाइफ गुजारते कैसे हैं, मैरिटल लाइफ गुजारते कैसे हैं, एक पेरेंट और पेरेंटहुड नीड्स क्या होती हैं, उसको कैसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। चूंकि इल्म के मरहले से गुजरे ही नहीं हम, तो इरफान के अंदर पैरा मरला ही जो है वो इल्म का आता है, उस चीज़ की आगाही होनी चाहिए। अब आगाही नहीं तो आप कैसे चलेंगे उधर। तो इन चीज़ों को वाज़े रखें अपने अजान के अंदर। वो ये चीज़ें इतनी अहम है कि ये चीज़ें अगर ज़हूर हो गया तब हमें आंखें खुलेंगी कि कहाँ आते हैं। जैसे अभी व्हाट्सएप पे आजकल बंद हुआ है हमारा रेगुलर, जब ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, ज़रा ऑल्टरनेट बताएं। मुझे फ़ौरन एक ख्याल आया था, जिस तरह ये जंग अभी स्टार्ट हुई और एक जिम्मेदारी समझते हुए अगर लोगों ने, तो ये आगयून के फतवे अभी के थोड़ी हैं कि आपको वो तमाम प्रोडक्ट के जो सहायनियत को सपोर्ट करती हैं ख़रीदना जायज़ नहीं, तो आज का फतवा थोड़ी है, वो तो लोगों ने रीफ्लोट किया है। ठीक है, नहीं तो पुराने फतवा फतवा में आखिस्तानी हूँ और रैबर और दीगर रहा हो, मैं नहीं था, पुराने फतवा में सारे। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं कि भाई कौन से प्रोडक्ट हैं जो ऑल्टरनेटिव होने चाहिए, समझ में आ गया अगर कल को निदा तो आप क्या उस वक्त तैयारी करेंगे, आप बताएंगे नासर इमाम कैसे होना है? तो भाई जो पहले से अमल करने वाला हो उसे पता था कि बेसिकली कौन से प्रोडक्ट हैं, या वो प्रोडक्ट को तो बाइकआउट किए हुए उस वक्त से, जब से उसे पता लगा था उस वक्त से ही कर रहा है, उसको पता है कौन सी ऑल्टरनेट है, तो आप तो तैयार ही नहीं हो इसका मतलब है। हो गए इसके माने कि अगर हमास की ये जंग ना होती, ये चीज़ रीफ्लोट ना होती, तो आप अभी भी सोए होते। तो एक फतवे की तो इसी तरह पूरी की पूरी तैयारी है, नासिर इमाम पूरा पैकेज है। तो नासिर इमाम बनने के लिए अगर इल्म ही नहीं है तो बनना तो अभी, तो कहाँ सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं अभी तक? तो बेदार होंगे, पता लगा निदाए आसमानी आ गई है, तो हम तो उन्हीं गाफलीन में से होंगे फिर के जो सो रहे होंगे। तैयारी थोड़ी करनी है फिर, उस तैयारी तो अब करनी है। तैयारी का वक्त तो ये है कि जब जहूर नहीं हुआ, जब जहूर हो गए तो जिस तरह वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कौन सी है प्रोडक्ट ताकि हम वो खरीदें, नहीं जो है सारे प्रोडक्ट, तो भाई आपने पहले क्यों नहीं तवज्जो दी? पहले आपको पता होना चाहिए था, बल्कि आप पूछने की नौबत क्यों आ रही है? तो आप जब जहूर हो जाए तब पूछेंगे कि बताओ भाई इमाम के लश्कर में कैसे जाना चाहिए। तो भाई लश्कर में जाने के लिए तैयारी होती है, तैयारी एक दिन में थोड़ी होती है, तैयारी तो पूरा प्रोसेस है, आमादगी उसके ऊपर तैयारी कि आप जब पहुंचे तो रेडी होकर पहुंचेंगे। जब आपने मास पे जाना है और आपने उसका लिबास पहनना है, तो जंगी लिबास आपके हिसाब से होता है ना, उसके बूट होते हैं, उसका हथियार होता है, उसकी यूनिफॉर्म होती है, तो ना यूनिफॉर्म का साइज पता है, ना यूनिफॉर्म सिलाई है, ना हथियार पता है, ना हथियार मौजूद है आपके पास, और आप जब निदा आएगी तो आप बोलेंगे आप बताओ। तो इन चीजों को बेदारी के साथ समझें, ये मराइल, ये वक्त खुद एक नेमत है कि जब तक जहूर का इज्जत नहीं हुआ है तो हम आमादा रहे इन चीजों के लिए। ये सारी चीजें बेदारी के साथ मुमकिन है, गफलत के साथ नहीं है। और एक थोड़ा सा यानी जुमला शख्स कहना चाहूँगा कि जितनी भी चाहे यहाँ बैठो या दीगर अफराद जब आगे पूछते हैं कि भाई ये मसाइल ये चीज़ें कैसे, तो सब आके एक्सक्यूजिंग मोड वाली बात करते हैं। कभी भी वो शख्स कामयाब नहीं है कि जो एक्सक्यूजिंग मोड को अपना चुका है। अच्छा ये इसलिए नहीं कर पाते कि बिजी रहते हैं, वो इसलिए नहीं कर पाते कि फलां मौजूद है घर में, वो इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे फैमिली में ये हिंड्रेंस आ जाती है, सब एक्सक्यूजिंग मोड है। क्या कुरान के अंदर, सीरत आइम्मा के अंदर कोई ऐसा उनवान है, सवाल का जवाब यस नो में दे दें, कि जिसने एड्रेस ना किया हो कोई उनवान? अगर ये ईमान है कि नहीं है कोई ऐसा अनुमान, तो ये आप क्यों एक्सक्यूज लेके आ रहे हैं कि ये इसलिए मुमकिन नहीं हमारे घर में और ये हमारे हालात है? हर हालात के हवाले से उसकी गाइडलाइन कुरान में भी मौजूद हैं, सीरत आइमा भी मौजूद हैं, नहजुल बलागा उठा लें, हर चीज़ का अनुमान मिलेगा, इक्तिसाद से लेके समाजियात से लेके सियासियात से लेके फैमिली को इंटीग्रेट करने तक का, पूरी पूरी मिल्लतों को चलाने का। आप तो एक घर की बात करें, पूरी ममलिकत कैसे चलाई जाती है बताया खतल के मौला अली गवर्नर्स को, कैसे नाकाम होती यही बताया। तो वही पढ़ लें तो पता लग जाएगा घर में नाकामी क्या, जब मिल्लत जिससे नाकाम हुई वही घर की नाकामी है। पढ़ लें वो खत, उठा लें वो असलूक, डील कैसे करना है, सीरत आइमा मौजूद है, हर लेवल पर डील किया, नजर बनते हैं आइमा अलैहिस्सलाम, सबसे आइडियल तरीन जो लाइफ टाइम मानी जाती है तमाम 11 आइमा के, उसमें वो बेसिकली इमाम सादिक की है, जहाँ से उलूम निकले क्या था उसको जाके पढ़े, तो नजरबंद किया हुआ था, पूरी फौज थी जिस गली में इमाम होते थे, अगर हॉकर भी यानी जो सब्जी बेचने वाले वाला गुजरता था उसको पर भी दोनों एंड्स पे खड़े होते थे जासूस के, कौन आ रहा है कौन बेचने आ रहा है सब्जी, ऐसा ना हो ये कोई साहबी हो जो कुछ पैगाम लेने आ रहा हो। तो उस जमाने में कैसे तबलीग की जिसकी सारी, हम तो कहते हैं कि फिकह जाफरी निकली, तो इसके माने के जो सबसे कठिन दौर था उसमें जब तक, तो बाकी आइमा तहदोबंद सऊगतें सब काम किया है। पांचवें आपको पता है क्वाइन के फ्रंट पे बैक पे जब बनू मैया इकोनॉमिक जिस तरह आज के दौर में जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो सेम स्ट्रेटेजी उस वक्त भी, ये सब कोई नई चीजें थोड़ी हैं जो इन लोग को अभी सीखी है इन लोगों ने, ये सब पुरानी है वही बनू मैया वाली है सारी। तो इक्तसादी कमर तोड़ने के लिए जो सिस्टम, उसको ब्रेक करने के लिए इमाम ने यहां तक डिजाइन करके दिया कॉइन को कि फ्रंट पे होगा बैक पे होगा सिक्के के, आपके जो इस्लामी सिक्का राइज होगा, ताकि जो बनू मैया की पॉलिसी फेल हो जाए। कैसे वर्किंग की होगी जबकि सबसे आसान दौर हम बता रहे हैं इमाम सादिक का है, तो जितने बाकी इमाम हैं लेकिन सब ने अपने दौर में काम किया, होम्स के सिस्टम को डेवलप किया, यूनिवर्सिटी से मुराद यानी जो तालीमी सिलसिले हैं उनको इमर्ज किया, खुम्स की रकम, खुम्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब निज़ाम कैसे डेवलप कर रहे थे ना, तो आप क्यों नहीं कर सकते अपने से घर में 6-7 अफलाज होंगे सात चीज़ों को मैनेज, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। ये बोले कि गलती हमारी है, हम मुतवज्जे नहीं है उन असलूब की तरफ, उन तालीमात की तरफ, क्योंकि हमारा टाइम नहीं है। दुनिया में माजरत, दुनिया में इतने बिजी हैं, नहीं है टाइम। दुनिया के लिए नहीं भेजा भाई, आखरत को समझ के खुदा की पहचान के लिए भेजा है। दुनिया के लिए भेजा होता तो फिर सब इमाम आपको बोलते कि ये कर लो, अरबपति हो जाओगे, खरब। इमाम ने आके ये तालीमात दी है, हम इसी में लगे। मतलब अगर आप ना माने, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये है, जैसे हमने पहले भी टच किया इस पॉइंट को, क्यों हम अपने बच्चों को बाहर भेजना चाह रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड ये है इक्तसाद इक्तसाद इक्तसाद, क्यों महंगाई महंगाई, ये सब आप इस एक बात की ना कि एक्सक्यूजिंग मोड है। इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें। बहरहाल ये चीज़ें मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि ये भी फ़र्ज़ है हम पे कि इन चीज़ों पे सेशंस होने चाहिए थे मदारिस से, मजालिस से, मेंबरों से। ये जो तीनों अहम है हमारे पास, मदारिस हो, मेम्बर हो, मेहराब हो, मजालिस हो, मदारिस, इन स्तूप वो ट्रेडिशनल वे में चल रहे हैं, वही ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वही ट्रेडिशनल चीज़ें बताई जा रही हैं, तो उन्हीं लिबादों के साथ हम मौजूद हैं। तफक्कुर तफाहुम को इग्नाइट नहीं किया जा रहा, यही स्कूलिंग सिस्टम का फ्लॉ है हमारे मुल्क के अंदर, यूनिवर्सिटीज का फ्लॉ है। वो पीएचडी कर लेता है, पीएचडी करने के बाद इस काबिल नहीं होता कि मकाला लिख सके, थीसिस लिख सके, क्योंकि वो चीज़ ही, तो ये चीज़ इमाम बचपन में ईजाद करवाना चाहते हैं, लेकिन हम पढ़ें तो चीज़ों को, सो रहे हम लोग, टाइम नहीं है, बिजी रहते हैं, तकरीबात सब कर रहे होंगे, ठीक है जनाब। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छा जी, तो इन चीज़ों को आपने देखना है बच्चे के अंदर, उसको लर्निंग एनवायरनमेंट देनी है, उसका थॉट प्रोसेस, जैसे हमने बात की 6-7 ईयर्स, तो आप उसको उस एनवायरनमेंट पर रखें जहाँ उसकी थॉट पॉजिटिव डायमेंशन में प्रोग्रेस करें, उसको वो सिनेरियोज दें, उसको वो एनवायरनमेंट दें, उसको वो घर का माहौल दें, उसको वो ग्रुप दें, टीम, फ्रेंड्स, फैमिली, कजन्स, कजन्स आप जैसे ये रियल टाइम मसला कि कजन्स होते हैं आपस में, अब बास कजन बिल्कुल उस फैमिली से हैं जो गैर दीन है, खूनी रिश्ता भी, एक गुजारी बात मॉडर्न है बहुत, एक बिल्कुल इस्लामिक है, तो अब कजन मिलेंगे बैठेंगे भी, तो यही तो आपकी जिहाद है कि जब वो उस जगह से आ जाए मिलके, तो उन चीज़ों को हम एड्रेस करें, ठीक है जनाब। तो इसी तरह जो है वो इस एज के अंदर एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि जर्नली चूंकि लर्निंग कैपेबिलिटीज इनकी हाई होती है, तो बहुत क्विकली चीज़ों को लर्न करते हैं, बहुत क्विकली स्किल करते हैं। तो बच्चों को इस एज में आप चाहें लैंग्वेजेस सिखाएं, स्पोर्ट्स सिखाएं, स्विमिंग सिखाएं, ये सब अहादीस की इंटरप्रिटेशन हैं, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि कोई साइंस ने बताया, सारे साइंस ने तो बताया, प्रूव किया है, अहादीस में आई है, तैराकी के इम्पैक्ट्स हैं बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर भी और उसके फ्रेश होने के लिए भी। स्विमिंग हैज अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड इमेंस इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड डेवलपमेंट, फिजिकली एंड मेंटली बोथ, ठीक है जनाब। डिप्रेशन वाले बंदे को आप स्विमिंग करा दें, आपको उसका डिप्रेशन का फेज, अगर वो सीवियर डिप्रेशन में होगा तो कट डाउन हो जाता है, ये सब इसके इम्पैक्ट हैं, ठीक है जनाब। तो इन चीज़ों के अंदर जो है वो साथ में उसकी फीलिंग्स भी जो हैं वो इस फेज के अंदर जो हैं वो बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो लिहाजा आप अगर उसको ज़्यादा मारेंगे, ज़्यादा डांटेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा। अच्छा जी, थोड़े से सवाल लेते हैं और फिर जितना टाइम बचेगा तो फिर हम जो एक बीच में स्लाइड रह गई उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन मैटर्स फॉर द गुड पेरेंटिंग, बिल्कुल 110%। मुरब्बी से मुराद हमेशा वह विल वालिदैन एहसाना, तो इसके क्या मायने हैं, ये सेकंड फेज की बात की है कि बच्चे क्या करें, वालिदैन के साथ एहसान करें, ये लिखा है वालिद के साथ एहसान करें, ये तो जिस तरह वालदैन की बात की है बच्चे के ऊपर, तो ये तो सेकंड फेज है। पहला फेज यहाँ पर है कि बच्चे की तरबियत के अंदर दोनों का किरदार है। अब दोनों का किरदार किस तरह है, किसका रोल कहाँ पर है, किस डायमेंशन में है, तो जारी बात है इसीलिए बात की गई है कि बेसिकली मदर का जिहाद इन हाउस करार दिया है, तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मदर की है, और इसीलिए फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो मेजर डोमिनेंसी है बेसिकली उसकी उन तमाम नीड्स को पूरी करना कि जो उसकी डेवलपमेंट के लिए चाहे वो फिजिकल हो या उसकी मेंटल हो उसके उस माहौल और आसार को मुहैया करना। अब वो चाहे खाने के एतबार से हो, कपड़े के एतबार से हो, रिहाइश के एतबार से हो या फिर उसके पीसफुल मेंटल इन्वायरमेंट के एतबार से हो, उसकी जौजा की भी उसके बच्चों की ये जिम्मेदारी शौहर पे डोमिनेट की गई है। वालदा पे क्या डोमिनेट की गई है कि बच्चों की तरबियत साजी यानी जो उसकी बेसिक तरबियत का उनवान है ये मेजर डोमिनेंट फेज है। तो पहले तो ये इस्लाम के इस डिवीजन को क्लियर रखें। अब कहीं पेरेंट अगर सेपरेटेड हैं, कहीं पेरेंट में से किसी की डेथ हो गई, जारी बात है ये एक फ्लॉ है और इसलिए इस्लाम ने जो है वो क्यों तशवीक दिलाई है कि आप जो हैं वो बगैर निकाह ना रहें। अब जारी बात है यहाँ महंगाई है, मामलात हैं, डिवोर्स रेट ज़्यादा हैं, तो अब हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे, लेकिन जारी बात है जब आप कोई भी सेगमेंट मिस करेंगे उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट तो निकलना है। तो जहाँ दो पेरेंट में से अगर एक लीव कर जाए चाहे वो सेपरेशन की वजह से हो या डेथ की वजह से हो, ये खला तो रहेगा। अब उस खला को एडजस्ट करना है आपको, ठीक है। मसलन अगर मेरे तीन रूम हैं और एक रूम के अंदर रिपेयर रिक्वायरमेंट हो, मेरे पास पैसे ना हो, ठीक है, मैं फिर जिस हद तक मेंटेन करना चाहूँ जितनी कैपेसिटी होगी वो करूँगा, लेकिन जारी बात है उसको फुलफिल नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर पेरेंट में से चाहे मदर या फादर अगर लॉस हो चुके हैं तो यू कैन नॉट रिप्लेस। हाँ, यू विल डू लिटिल बिट कॉम्पनसेशन। अब वो कॉम्पनसेशन कितनी कर सकते हैं, 10%, 20%, 30%, या आपकी कैपेसिटीज पर मुनसर है, या आपकी स्किल सेट पर मुनसर है, या आपकी खुद आगाही पर मुनसर है, आप किस तरह कर सकते हैं। तो खुलासा कलाम इस सवाल का जवाब यह है कि जो है वो बेसिकली अगर दोनों की राय अलग हैं तो सबसे आसान काम यह है कि बेसिकली कभी बच्चों के सामने उसका इजहार एक पेयर को, जो एक फादर अगर कुछ कह रहा है तो मदर के सामने ना करे कि भाई तुमने गलत कहा है, बाद में उसे डिस्कस कर लेगा ये चीज मुझे समझ में या अपील नहीं की या गलत थी, ये ऐसे होने चाहिए थी और मैंने इसीलिए नहीं कहा कि बच्चे पे इसका असर ना पड़े, इसलिए मैंने सामने नहीं कहा। फिर बच्चे को जो आपने, अगर आप देखते हैं कि बार बार वो जो वो मुझे रहे मिसाल के तौर पे मुसलसल उस पॉइंट पे, तो फिर आप बच्चे पे थोड़ी वर्किंग करें। यानी बच्चे को ये ना बताया गया कि तुम्हारे वालिद गलत कहते हैं, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव चीज़ है। हाँ, अनलेस एंड अंटिल वो कोई ऐसी एक्सट्रीम चीज़ करता है, मसलन वो खुद बाप नशे का आदी है, वो बच्चों की भी कहते हैं तुम भी सिगरेट और ये चरस और ये सब पिए बहुत मज़ा आएगा, हाँ यहाँ पर आप इंटरवीन कर सकते हैं एक्सट्रीम वर्ड के साथ कि नहीं ये चीज़ बहुत ही डेंजरस है और ये चीज़ नुकसानदेह भी है और ये चीज़ अपने फादर की तुमने माननी नहीं है। क्यों? इसके ये नुकसान, ये चीज़ें, और आओ मैं तुम्हें दिखाऊँ। फिर आप जब ये गुजरें तो दिखाएं नशे के जो आदि अफराद हैं उनका क्या होता है, क्लिप दिखाएं। अब उसके क्लिप तो पाकिस्तानी अवेलेबल नहीं है लेकिन वेस्ट में तो मौजूद हैं कि जिन लोगों ये फिर जो रिहैब सेंटर्स में जाते हैं उनकी फिर वो वीडियो फिल्माते हैं, यानी पिक्चराइज करके वो बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी क्या थी और जब नशे में पड़े तो कारोबार सब चीज़ें ख़त्म हुई, फिर गए रिहैब में रहे तो क्या मुश्किलात रहीं और फिर अब आए तो अब नई ज़िंदगी गुजारने के लिए कितनी, अब तो उसको बताएं दिखाएं, देखो जब कोई नशा करता है तो उसका अंजाम कितनी मेहनत करनी, तुम चाहते हो इस मसाइब से गुजरे, इस मसाइल से, वो बोलेगा नहीं। इस तरह आपको थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी अगर इस तरह के मामलात किसी फैमिली में के जो दो मतजाद राय रखने वाले हैं। अगर एक फादर मॉडर्न है जो है वो मदर जो है वो मसलन बहुत ही इस्लामिक है, तो पहला फिर जैसे बात की कि सबसे पहले हमें रूट पे जाना पड़ेगा। तो रूट ये थी कि आपने बेसिकली जो है शादी सिलेक्शन करते वक्त इन चीज़ों को क्यों नहीं देखा था, आपने ये देख लिया था कि वो साहब जो है CPS ऑफिसर, अपना क्या कहते हैं PSC ऑफिसर हैं, चूँकि गवर्नमेंट प्रोटोकॉल मिला हुआ है, ये हैं वो हैं, तो आपने बस बोला बाकी दीन में देख लें, तो ठीक है भाई जब दीन तो ये होगा। फिर तो हमेशा याद रखें पहले किसी चीज़ के मामले को समझें, रूट को देखना पड़ेगा। अगर रूट में गलती की है तो रूट की गलती कभी भी 100% रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कॉम्पनसेट, ठीक है ना। तो बेहतर है कि जो पहले स्टेजेज हैं उनको देखें, नहीं है तो फिर बारह, तो आगे की चीज़ों को सिर्फ आप लिटिल बिट इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन नॉट एंड, क्योंकि आप जो चीज़ बीच में आ गई वो ऊपर जाएगी, थोड़ा सा आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो जिनके मुख्तलिफ राय हैं तो उनको थोड़ा सा अपने करना पड़ेगा। 15 साल का बच्चे अपने बेस्ट फ्रेंड को अब तक चूज़ नहीं कर पाए तो वालदैन बिल्कुल आप उसे देखें, टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये नहीं कि वो स्कूल का ही चाइल्ड हो, बेस्ट फ्रेंड उसकी अपनी फैमिली में, इवन ज्वाइंट फैमिली में भी हो सकता है, कजन्स के दरमियान भी हो सकता है, मोहल्ले में भी हो सकता है, तो आप उसको मोटिवेट करें और उसको बताएं कि बेसिकली 15 साल के नौजवान को ऐसी एकेडमिक्स बेहतर कारकर्दगी करनी हो तो हम उसको कैसे मोटिवेट करें, तो उसे बताएं कि बेसिकली जो है वो फील्ड्स ये मोटिवेट करने का सबसे अहम पॉइंट जो ये है कि आपको उसकी इंक्लाइनेशन देखनी थी। अभी हम जब हम 12 टीनेज की बात करेंगे आज टाइम नहीं मिल पाया हमें, तो इस एज में आपने उसका इंक्लाइनेशन देखना है कि बेसिकली वो कहाँ जा रहा है। जरूरी नहीं कि डॉक्टर का बच्चा सारे डॉक्टर बने, वो नहीं पढ़ रहा, उसका इंटरेस्ट प्री मेडिकल में नहीं है तो क्यों वालदैन मुझे ना कि प्री मेडिकल करो, नहीं मैथ्स अच्छा उसका क्यों मुझे ना कि उसको आप प्री इंजीनियरिंग को जो है फोकस करवा रहे हैं उसको। अगर वो हो सकता है कि उसका आर्टिस्टिक माइंड हो, आर्किटेक्चर की तरफ ले जाएं, ही विल परफॉर्म वेल। तो ये वो एक बेसिक इशू है पेरेंट्स के साथ कि वो जैसे हमने बात की अब ये डिक्टेटरशिप है टेक्निकली, नहीं ये लो, नहीं है उसकी इंक्लाइनेशन उस तरह, भाई क्यों लो, वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन आपके इस ऑप्शन से कि भाई या तो तुमने इंजीनियर बनना है या तुमने डॉक्टर बनना है। अब आपने भाई दुनिया के अंदर आज के दौर में तो फिर भी अब आप लोग के पास एक अच्छी च्वाइस है, वरना जब हम लोग छोटे थे तो सिर्फ दो ही ट्रेंड होते थे, वही डॉक्टर इंजीनियर। अब तो फील्ड हैं, मतलब जब से डिजिटल मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग आई तो अब तो सैकड़ों ऐसी निश आ गई है कि जिसके अंदर आपके पास एक एक्सटेंडेड डोमेन है, आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस से लेके इंजीनियरिंग साइंसेस से लेके बिजनेस साइंसेस से लेके सोशल साइंसेस, आपके पास एक डोमेन है पूरा, यू हैव सेवरल डजंस ऑफ ऑप्शंस। तो क्यों आप बेचारे को जो है वो, तो आप उसके इंटरेस्ट को देख के उधर उस सब्जेक्ट की तरफ उसको मोटिवेट करें, वो कैच करेगा, नहीं है तो आप उसको लें। आप तो जो मोटिवेशन वाला सवाल जिस फॉर ने लिखा है, तो बेसिकली आप उसको खुदा के लिए वहां मोटिवेट ना करें जहां आपकी मोटिवेशन है, आप उसको वहां मोटिवेट करें उस सब्जेक्ट में जहां पर उसका अपना इंटरेस्ट हो। वो हो सकता है आर्ट्स भी हो, तो क्या आर्ट्स के करने वाले नाकाम होते हैं दुनिया में, सवाल, क्योंकि मैंने बात की ना हदफ माजरत के साथ, क्योंकि आप समझते हैं साइंस कंप्यूटर बिजनेस करके वो शायद पैसा और आर्ट्स में पैसा नहीं है। हो सकता है कि वो इस लेवल का अदीब बने उर्दू में पीएचडी करने के बाद कि जिसको प्रोडक्ट परफॉर्मेंस मिल जाए, यूनिवर्सिटी में उसके नाम की चेयर हो, चेयर समझते हैं यानी जैसे अखबारियात की चेयर है, इन इलामों ने जो काम किया यूनिवर्सिटी में उसके नाम की चेयर से मुराद है कि बाकायदा फुल प्रोफेसर अपॉइंट होता जो अखबारियात के ऊपर लेक्चर्स देता। तो किसने कह दिया कि भाई वो आर्ट्स जो बेकार सब्जेक्ट होता है, जो नहीं आप इंटरेस्ट वाला प्लेस पे डाल दो सब काम करेगा, उसको अगर नहीं इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसको अगर बिजनेस करने का शौक है उसको आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ लेके चले जाए, बोला ये करो, इंटरेस्ट देखें उसका ना कि अपने इंटरेस्ट उसको दें। यानी सब्जेक्ट की बात करें हम अभी, यानी दुनिया के सब्जेक्ट्स के अखबार से बात हो रही है, दीन के हवाले से कोई च्वाइस नहीं है उसमें, जारी बात आपने थोड़ा पुशअप करना है, ठीक है जनाब। तो ये दोनों सवाल आपके एड्रेस हो गए जनाब। अच्छा जी, मेरे शोर का इंतकाल हो चुका है, मेरे चार औलादे हैं, मैं बड़ी बेटी और बेटा 16 साल का है और ओ लेवल्स की 11वीं ग्रेड के तालिब इल्म है, बेहतरीन मुकर्रा बेहतरीन शायरा जिसकी कुतुबीनी जिसको कुतुबीनी का भी बे इख्तियार बे इंतहा शौक है। मसला ये है कि मेरी बेटी के सारे असातिज़ा का यकीन शिकवा है कि इसमें बेहतरीन क्लास में बच्ची बेहतरीन, अब ये हुलिया लिखा है, अच्छा तलबा है जो अपना काम और होमवर्क करती है लेकिन दौरान इम्तिहान इसका पर्चा देखकर अंदाज़ा होता है कि बच्ची बहुत कंफ्यूज है, जिसकी वजह से हम इसके साथ मुतासर हुए, कभी कभार इसका रवैया छोटे भाइयों के साथ जो भी वायरल नहीं होता और ऐसा होता है कि समझ नहीं आता है, तो कन्फ्यूज, तो खुलासे कलाम ये जिसे हम कहते हैं कन्फ्यूज पर्सनैलिटी। तो कन्फ्यूज पर्सनैलिटी इसी वक्त होती है कि जब आप बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं देते। एक चीज़ मुझे पता होती है लेकिन जब मैं जैसे हम ये जब वायरल लेते हैं स्टूडेंट्स का, तो यही होता है कि बच्चे ने पढ़ा हुआ है लेकिन हम क्योंकि हम कॉन्फिडेंट होते हैं उसके सही आंसर को भी, अच्छा यही है, अब बच्चा बोलते हैं सर मैंने गलत बोला कि सर ने ऐसा रिएक्शन दिया, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंट होता बोलता सर यही है, वो सर के अच्छा कहने पे कंफ्यूज नहीं होता। तो ये क्या चीज़ है, ये रिफ्लेक्ट करती है आपकी कंफ्यूज स्टेट को। कंफ्यूज स्टेट कब होती है, जब बच्चे को अर्ली एज के अंदर हम कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करवाते तो वो कंफ्यूज रहेगा। डिसीजन पावर ऐसे लोगों के अंदर वीक होती है, इसलिए हमने क्या कहा कि 6-7 साल में उसको बुलाएं, अगर आप शॉपिंग भी गए उसे बोले बेटा कौन सी चीज़ लूँ, बड़ा फला चीज़ ज़रा देख के बताओ क्या बेहतर है आजकल क्या, ये जब आप ये काम करेंगे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। वो आपको भी ऑन करेगा और आपकी जैसे हमने बात की इस वाले पॉइंट से बहुत सारे मैटर एड्रेस हो जाएंगे जो हमारे माशरे में चल रहे हैं, ठीक है ना, बात नहीं सुनता, ये सब इससे कवर होगा। तो बच्चे को इस एज में आप सिलेक्शन के अंदर इन्वॉल्व करें, राय के अंदर इन्वॉल्व करें, कोई इवेंट करना है। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी छोटी बहन की जो है वो फला चीज़ सेलिब्रेट करें, तुम्हारा क्या ख्याल है? हालांकि आप ऑब्वियसली डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन आप ये काम बच्चे हाथ कराएंगे तो वो अच्छा तो बेटा क्या क्या होना चाहिए, मेनू में क्या रखें, डेकोरेशन कैसे करें, गुब्बारे बलून किस कलर के, इतनी छोटी छोटी बारीकी जब आप बातें उससे करेंगे ना, ही विल बी वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड, एंड वो फिर आपके साथ ऑटोमेटिक ऐसे रिलेशन में आएगा कि जो हम बात कर रहे थे कि आपने जोन ऐसा क्रिएट करना है कि उसी जोन में रहे और आपको हर चीज़ बताएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करती हैं उन तमाम चीज़ों को। तो ये बेसिकली, तो कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप बेसिकली जो है वो उसको डिसीजंस और राय के अंदर शामिल करें ताकि वो जो है वो आपके जो कन्फ्यूज स्टेट है उसको करें। दूसरा मैं आपको टिप दे देता हूँ, वो टिप ये है कि बेसिकली आप उससे बोलें कि जो चीज़ वो पढ़ती है एग्जाम से पहले पर्टिकुलरली जो कुछ उसने याद किया एक बार उसको राइट डाउन कर लें, ठीक है ना, और राइट डाउन करके आपको दिखाएं, ठीक है ना। तो आप बोलें कि तुमने बिल्कुल सही किया है, और एक सवाल मेरे पास शायद जेब में था तो वो मैं निकाल लूँ कहाँ चला गया वो, ठीक है, ताकि उनका भी शिकवा ना रहे कि भाई हमारा सवाल सबसे पहले आया था और नहीं हुआ। तो ये कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने के दो मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं कि बेसिकली इन्वॉल्व हर इन डिसीजन मेकिंग एंड राय, और उसके बाद साथ में आपने ये करना है कि बुनियादी लिहाज से जो चीज़ वो पढ़े उससे बोले राइट इट डाउन, आफ्टर जब मेमोराइज कर लें उसको बोले लिखें, और लिखकर आपको चेक कराएं और आप बोले बिल्कुल सही किया है, कोई गलती नहीं है, इसलिए तुमने अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। मेरा बेटा दस साल के हैं, बहुत हसास, फौरन रोना शुरू कर देता है। अपने छोटे भाई 5 साल के हैं जो इससे जेलसी महसूस करते हैं, वही जो हमने बात की कि इन्फीरियर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला मामला है यहाँ पर। और इसकी बेसिक एक रीज़न यहाँ पर यह है कि बेसिकली आप राइट टाइम दें दोनों को, ठीक है ना, ये मैनेज करना होगा। एक 10 साल का 5 साल दोनों का टाइम फ्रेम अलग अलग होना चाहिए, किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, निगलेक्ट नहीं करना। अच्छा दुबले हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये असल में ये हाँ अभी आप चूंकि हमारे पास नेक्स्ट एक ब्रैकेट में ये पॉइंट है ना, जैसे हमने बात की थी कि वो सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचना शुरू करता है, यानी अपनी प्रेजिंग, तो वो देखता है, इसमें सारी मिसालें हैं कि मैं देखने में कैसा लगता हूँ या लगती हूँ, ये टीन एज के अंदर पीक होती है। तो कैसे काउंटर करना है वो हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे हैं सारे, ये कि दुबले हैं तो मैं बुरा लगता हूँ, इतना पतला हूँ, मेरे बाल मेरे प्यारे नहीं हैं, बात भी बहुत कम करते हैं और क्लासरूम की डिस्कशन भी नहीं करते। अपनी बड़ी बहन जो कि 13 की है, इनसे रवैया बेहतर है, बात भी करें तो बहुत शॉर्ट आंसर करते हैं और फ्रेंड भी नहीं बनाते, कज़न से ज़्यादा दोस्ती है नहीं, स्कूल में भी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, सवाल नहीं करता, ध्यान से नहीं सुनता। ऐसे बच्चों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उनके हर रैंक में मल्टीपल चीज़ें जो उसके अंदर हैं जिसको आपको काउंटर करने के लिए इसको सबसे पहली चीज़ से टाइम देना होगा, ठीक है ना। टाइम देने के साथ साथ आपने जो एकेडमिक प्रोग्रेस है, एकेडमिक प्रोग्रेस इज अ सेकेंड स्टेप, उसकी स्किल्स पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिक उसकी परफॉर्मेंस एकेडमिया में हो या घर में हो बेहतर होगी। तो सबसे अहम तरीन चीज़ है कि डायरेक्ट हम कोई चीज़ एकेडमिकली ये नहीं कहेंगे आप ट्यूशन लगा दें वो प्रोग्रेस अच्छी हो जाएगी, उसके अंदर पर्सनालिटी डेफिसिट्स जो हैं उसको ओवरकम करें। अब अगर उसके अंदर जो है मिसाल के तौर पे वो ध्यान नहीं देता तो आपको देखना पड़ेगा ध्यान ना देने के लॉजिक्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप ध्यान दें बच्चे पे, उसको टाइम दें, उसके साथ बैठें, चाहे आपको नहीं भी आता हो कोई चीज़ उस सब्जेक्ट की, एटलीस्ट घर आने के बाद जब वो स्कूल से आता है उसकी डायरी खोल के, उसकी होमवर्क की कॉपीज खोल के कुछ ना कुछ इनपुट दें उसको, ठीक है ना। भले आपको मसलन वो मैथ्स का सवाल लेके आया और आपको नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट खोल के देख के साथ में बैठ के उसके अच्छा चलो मैं इसको सॉल्व करने का देखती हूँ। तो मैं आपको टिप बता देता हूँ, जिस भी क्लास में बच्चा हो वो हर क्लास जो भी टॉपिक है मैथ्स का साइंस का जो भी, वो आप जो है वो यूट्यूब पर लिखें वो सब आ जाएगा, उसके आंसर्स आ जाएंगे हल्की वजह, और ये सब नहीं आता तो चैट जीपीटी पे लिख दें, वो सब आपको सॉल्व करके दे देगा। पैराफ्रेजिंग करनी वो दे दें, ऐसे लिखना है वो दे, सब वो उर्दू में लिखना है उर्दू में करके दे देगा वो, तो चैट जीपीटी तो लेकिन आप सीखें पहले, फिर सीखना नहीं है उसमें, सिंपल आप चैट जीपीटी जो है वो अकाउंट बना लें उसके बाद जो है वो लिखें, ठीक है ना। तो चैट ओपन ओपन AI डॉट
जो है वो स्लैश चैट वो उसकी वेबसाइट है, आप जाकर उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप जब बैठेंगी तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें उसकी मैनेज होने लगेंगी। तो असल चीज़ पहले क्या, एकेडमिक से पहले उसकी स्किल डेफिसिट जो है उसको ओवरकम करना है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए उससे डिस्कशन करें, उसको सिनेरियोज दें और उसके साथ इनपुट लें, राय में शामिल करें, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। उसके अंदर शाइनेस है तो उसको साथ लेके जाएं, ठीक है ना, साथ लेके जाएंगे तो वो चीज़ें उसके अंदर आएंगे। हाउ टू मैनेज अ स्पेशल नीड चाइल्ड विद नॉर्मल चाइल्ड, समटाइम स्पेशल नीड चाइल्ड मेकिंग मैथ्स विद अदर किड्स, हाउ टू मैनेज विद दिस। ये तो सारी बात है, ये तो पूरी मैनेजमेंट है। अब वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है या बेसिकली ऑटिज्म के किस फेज में है, ADHD का चाइल्ड है, ठीक है ना। तो अगर ADHD का चाइल्ड है तो उसमें सिम्टम कौन से डोमिनेट कर रहे हैं, तो पूरे सारी बात अभी डायग्नोस्टिक हुआ है कि हम कैसे डील करते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड को या ADHD के पेशेंट्स को। तो ये तो थेरेपिटिक्स वाला मामला है ना। तो जर्नली ये कि सारी बात है, पहली चीज़ तो ये कि ऐसे बच्चों को आप स्पेशल स्कूल में पढ़ाना चाहिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो सबसे बहुत सारी गलती जो हम, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स आते हैं अक्सर, तो जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि बेसिकली वो हमने पहले तो नॉर्मल उसमें पढ़ाया जा रही बात है, वहाँ पर वो मैथ्स और क्रॉस में जाता था, इसलिए स्कूल वाले बोल रहे हैं भाई इसे हटाया। तो आपने सबसे पहले गलती की थी, वो जगह उसके लिए थी ही नहीं। तो आपको स्पेशल स्कूल में ही बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग कराना होता है, ताकि उनकी क्योंकि इनकी डेवलपमेंट क्या होती है, स्लो होती है। और अभी इसकी बहुत सारी ऐसे में सारी बातें, जो बीमारी है ये, तो इसलिए इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और हर टाइप्स के अदवार से बच्चों को रिहैब करने की गाइडलाइंस हैं। किसी के अंदर हाइपर एक्टिविटी होती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। कोई बच्चा वेरी स्लो लर्नर है, किस लिहाज से, राइटिंग के लिहाज, तो उसकी स्ट्रेटजी अलग है। कुछ बच्चे हैं स्लो लर्नर हैं स्पीकिंग के अदबार से, अल्फाज लिखते सही अल्फाज सही नहीं, उसकी स्ट्रेटजीज अलग है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के ज़िद्दी हैं, उनकी स्ट्रेटजी। तो हर एक, ये पूरा एक जारी बात है डिजीज़ का स्पेक्ट्रम है। तो पेशेंट की सिम्टम्स सिवियरिटी देख के फिर हम इसकी गाइडलाइंस होती हैं। तो बहरहाल अगर स्पीच का मतलब, तो स्पीच थेरेपिस्ट से रब्ता करना पड़ेगा। अगर पर्सनालिटी डेफिसिट है बेसिकली आपके पास जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है उससे सेशन लेने पड़ते हैं। बस स्कूल इज डेफिनेटली वहाँ पर होता है। और आप घर के अंदर कैसा वो रखेंगे इन्वायरमेंट, उसका रूम कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी यूट्यूब पर गाइडलाइन मौजूद है। क्योंकि हर स्पेशल चाइल्ड के एडवाइस से गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो बच्चे ज़्यादा जल्दी जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं चंद साल के अंदर। तो इसलिए ऐसे भी चाइल्ड ने पास जो कि इनिशियल फेज में जिन्हें सारी गाइडलाइन फॉलो करते हैं 12-13 साल की उम्र तक, अगर आप उनसे मिलेंगे जब तक आप टाइम नहीं गुजारेंगे, ये कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि भाई स्पेशल चाइल्ड था। तो ये वो पेरेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग उन तमाम चीज़ों को फॉलो किया। तो अब 8-10 साल के बाद अगर आप बैठ के देखेंगे तो कभी भी ना उसकी फिजिकल एक्टिविटी से और ना उसकी स्पीच से आप अंदाजा लगा नहीं सकते कि बेसिकली ये एबनॉर्मल है। हाँ, जब थोड़ा टाइम गुजारेंगे फिर चंद चीज़ें बता देंगे, हाँ यार ये नॉर्मल चाइल्ड से थोड़ा सा कम लेवल पे काम और रिस्पॉन्ड कर। बहरहाल ये पर अपने आराइज तमाम करते हैं इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से ये अगला सेशन एक और हम कंटिन्यू करते हैं और फिर हम टीनेज और जो एक स्लाइड मिस हो गई है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलावात।